कृपया पीछे दबराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पिछले सत्र से हमने कृष्णा सुदामा की दशम स्कंद के 80 और 81 ये दो अध्यायों से हम चर्चा करने वाले थे। तो आप में से कुछ भक्त लोग पहली बार आए हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से हम पिछले सत्र में हमने जो की थी उसके बारे में बताएंगे आपको और आगे हम जाएंगे। कितने लोग उसमें नहीं आए थे हाथ ऊपर करिए, ठीक है, आपको संक्षिप्त रूप में बताएंगे उसके बारे में। ये जो कृष्ण रसायनम का कार्यक्रम है, मैं हर रविवार को हर महीने पहले रविवार को दोपहर 2 से 4 हम करने की योजना है। पहले लगभग 5-6 क्लासों में रुक्मिणी मंगलम करके की थी हमने। अब ये दूसरा टॉपिक है जो कृष्णा और सुदामा के लीला। प्रभा जी बताते हैं कि भारत के अनेक लोगों ने इस लीला को हजारों बार सुना होगा, फिर भी ये लीला इतना इसमें मधुरिमा है, इसको पुनः बार बार सुनाया जा सकता है और लोग सुन सकते हैं। और जितने बार भी सुनो उसमें हमारे आनंद का वर्धन ही होता है इसे। क्योंकि जैसे अगर आपको गुलाब जामुन देते हैं, एक देते हैं तो दूसरा खाने की इच्छा होता है ना, और भी दो देते हैं तो आप मांग कर लेते हैं। लेकिन भौतिक दुनिया के पदार्थों में हम कुछ समय के बाद हम थक जाएंगे, हम ज्यादा खा नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान के संबंध में बताया है कि शास्त्र में ये ऐसे ये लीलाएं, जैसे भगवान अनंत हैं, इस तरह की लीला भी अनंत है, उसमें मधुरिमा भी अनंत है उसमें। इसलिए ये लीला को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो पिछले सत्र में हम परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी उसके जवाबी में इस कथा को सुना रहे हैं। तो ये श्लोक शोध फर्स्ट श्लोक का देखिए, इधर परीक्षित बता रहे हैं। श्री राजो वाच भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यांजनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामि हे प्रभो। ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित, मैं भगवान के विविध कार्यकलापों के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। अपने गुरु जी को बता रहा है कि भगवान के एक नाम है अनंत वीर्यस्य, उनके अंदर भगवान के अंदर इतना शक्ति है, पराक्रमता है, उनके लीलाएं अनगिनत हैं, और आप तो बताते आए हैं और भी हमें सुनने की मन हो रहा है, और भी सुनाइए ऐसे बताते हैं। तो 2, 3, 4, 5 इन श्लोकों में क्या बता रहे हैं, हमारे सब इंद्रियों को हमें भगवान के सेवा में ही लगाना चाहिए, उनको गलत दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इस तरह बताते हैं परीक्षित। वो बताते हैं कि अगर कोई राजा है, उसका बड़ा मुकुट है, वो बहुत गर्वित है, वो डूब जाता है इस संसार में ऐसे है। लेकिन ऐसे राजा को भी क्या करना चाहिए, अपने मुकुट को झुकाकर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इस तरह अगर कोई ऐसे एक हमने सुना, एक स्त्री को उसके पति ने एक इसको क्या बोलते हैं, नोज रिंग को नथनी बोलते हैं, हाँ नथनी पहनी थी, एकदम सुंदर डायमंड स्टडेड नथनी पहनी थी वो। तो ऐसे अपने सखियों के पास जाकर दिखाया, उन्होंने देखो अपने नाक को ऐसे ऊपर करके दिखाया ताकि सब देख पाए उसको, देखा तो उसके सखियों ने पूछा कि तुमको किसने दिया है इतना सुंदर, बोले कि मेरे पति लेकर आए हैं मार्केट से स्पेशल हमारे लिए। तो ये कवि ने एक कहावत लिखा, ऐसे वो दोहे लिखा, वो बोला कि जो पति ने तुमको नतनी दिया उसको याद किया तुमने, लेकिन जिसने तुमको नाक दिया उसको भी याद करो, है ना। इस तरह है, इस दुनिया में लोग भगवान को भूल जाते हैं, है ना, इसलिए पहले भगवान को भी याद रखना चाहिए साथ साथ। इस तरह बता रहे हैं कि अपने अलग अलग अंगों को लेकर, अवयवों को लेकर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो बताया जा रहा है पहले 3-4 श्लोकों में। और वो बता रहे हैं इधर जो कृष्ण कथा में रमण करते हैं वो भौतिक दुनिया के वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। इस भौतिक दुनिया में विविध तरह के जीव को कार्यकलाप करने में इच्छा होता है, लेकिन वो कार्यकलापों से उसका दुख बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई मार्केट में जाता है, कभी कभी ट्रेन में भी हम देखते हैं ऐसे पकोड़ा नहीं तो भज्जी बेचते हैं, ऐसे घमा 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 सुगंध आता है, किसी को लगता है कि जैसे वड़ा पाव बेचते हैं उधर कातरा ये इसमें कर्जत में लोनावाले में चिक्किया, ऐसे हर एक स्टेशन में एक एक स्पेशल है। तो जब उसका सुगंध आता है किसी को लगता है कि इसको खरीद कर खाना चाहिए, लेकिन खाने के बाद पेट में दुखता है वो, क्योंकि अच्छा नहीं है, पता नहीं कितना सोडा डालते हैं और कभी कभी क्या क्या डालते हैं, वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए कुछ भी डालते हैं ना। तो कभी कभी दुनिया के पदार्थ ऐसे ही हैं, देखने में इच्छा होता है भोगने के लिए, भोगने के बाद दुख होता है, ऐसे बनाया गया है इस दुनिया। तो इसलिए हरेक व्यक्ति हरेक जीव को इस दुनिया में शास्त्र बताते हैं कि विहित कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, करने के लिए लायक कर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र बताते हैं। लेकिन वो समझने के बाद भी जानबूझकर भी जीव गलत मार्ग में जाता है, लेकिन न जाने के लिए उसको भगवान के दिव्य लीला चेष्टाओं की ओर आकर्षण को जागृत करना चाहिए। जब हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं के ऊपर आकर्षण जागृत हो जाएगा, उस जागरण से हम हमारे मन और हृदय इतने आनंद में डूब कर रहेंगे तो कभी भी हम गलत दिशा में मुड़कर नहीं देखेंगे। तो इस तरह शास्त्र बताते हैं, इधर एक श्लोक में बताते हैं दूसरे श्लोक में, को नुषत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषन्न काम मार्गनैः। बताते हैं कि जो भक्त भगवान की कथा में आनंद लेता है उसको विशेषज्ञ बताया गया है, वो सब तरह के गलत आदतों को छोड़कर वो भगवान के लीला कथा में भगवान से संबंध जोड़ने वाली कथा जो है उसमें आनंद लेता है, ऐसे बताते हैं। तो अनेक पिछले सत्र में हमने बताया था कि अनेक भौतिक लोग आपको बोलेंगे कि अरे भौतिक जीवन के ऊपर ध्यान दो, जो ध्यान देना तो आवश्यक है, ऐसा हम नहीं लोगों को बताते हैं कि भौतिक जीवन को भूल जाओ, सिर्फ नाम जपो। लेकिन भौतिक जीवन में इतने डूब नहीं जाना चाहिए कि भगवान को हम भूल जाते हैं, ऐसा ना हो जाना चाहिए। इसके विरुद्ध अगर कोई भगवान के ऊपर ध्यान देता है तो उसके भौतिक जीवन भी सरल हो जाता है उसका, क्योंकि भौतिक जीवन में सबसे बड़ा समस्या देने वाला वस्तु क्या है, मन है। तो क्योंकि मन बड़ा बदमाश है, मन बड़ा असुर है, इसके कारण अगर भगवान को प्राप्त किए बिना मन को कोई अपने चंगुल में अपने कंट्रोल में नहीं ला पाएगा कोई भी, इसके कारण सारे दुनिया के लोग इतने कठोर परिश्रम करने के बाद भी वो दुखी हैं। लेकिन भगवान के भक्त भक्ति में भक्ति भाव को जागृत करके उसमें आनंद प्राप्त करके मन को शांत करके इंद्रियों को शांत करके वो भक्तिमय जीवन बिताते हुए उसके भौतिक जीवन की जरूरतें भी पूर्ति हो जाएंगे उसके, इसलिए ऐसे बताते हैं। आगे तो हमने बताया था पिछले सत्र में, शायद जिन्होंने अटेंड किया आपको याद रहेगा कि भौतिक जीवन कैसा है, जैसे हम ये सर्प सीढ़ी खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी, इस तरह वो बड़ा सर्प के बराबर है मृत्यु। ऊपर देखिए, नीचे से जाते समय छोटे छोटे सीढ़ियां हैं, छोटे छोटे सर्प हैं। ये किसके बराबर है? हमारे जीवन में कंपनी में प्रमोशन मिल गया, छोटा सीढ़िया, प्रमोशन मिल गया हमको, ऐसे बोलता है। अगर किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया तो उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को बेटी का शादी हो गया तो उसको भी सीढ़ी है, अच्छा बेटी का शादी हो गया, अभी सेटल कर दिया हमने, खुश हो जाते हैं लोग। लेकिन कुछ कुछ छोटे सर्प भी हैं, पैसा कमा कर लेके आया, किसी चोर ने उड़ा दिया उसको, चोरी कर लिया किसी ने, अरे 20,000 रुपया चोरी हो गया इसे, तो घर में आकर रोता है। तो लोग बोलते हैं ठीक है पैसा तो गया लेकिन आपको कोई मारा नहीं, आप तो आगे है ना, ठीक है, वो एक सर्प है, छोटा सर्प है। इस तरह कुछ लॉस नुकसान भी होता है, कुछ लाभ भी होता है हमारे जीवन में। इसलिए छोटे सीढ़ी हैं, छोटे सर्प हैं। लेकिन जितना भी नुकसान हो इंसान तकता नहीं, बोलता कि ठीक है थोड़ा नुकसान हो गया लेकिन अभी आगे जाकर और हम प्रयत्न करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऊपर 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 जाने के बाद बड़ा सर्प जो है ऊपर से नीचे एक नंबर तक लेके आता है वो ऊपर से। देखा आपने? ओ, मृत्यु से तुलना किया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय इंसान सब कुछ खो बैठा है इस दुनिया में, है ना, कुछ नहीं लेके जाता है। ये जो बुद्धिमान है वो लोग समझ सकते हैं कि हमें ऐसे पदार्थ को इकट्ठा करना चाहिए जो आत्मा के साथ जा सकता है। आत्मा के साथ जाने वाली पुण्य है, पाप कर्म है और भक्ति कर्म है, तीन चीज है। और इसमें भी पुण्य कर्म भी कट जाएंगे, क्योंकि पुण्य कर्म कैसा है, अगर आप एक आपको कंपनी कुछ 10,000 रुपया देता है, बीवी बच्चों के साथ जाओ नैनीताल शिमला ऐसे कहीं तो हिल स्टेशन में घूम कराओ, तो बीवी बच्चों के साथ जाता है इंसान एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर, तो 10,000 रुपया खर्चा करके आ जाता है वो। उसके बाद कंपनी में जाकर वापस गधे के समान काम करने का, वापस है ना, परिश्रम करने का ऐसे। तो इस तरह पुण्य भी ऐसे ही, इधर से स्वर्ग लोग जाओ पुण्य खत्म करके आ जाओ वापस, और पाप भी ऐसे ही है, नरक में जाओ दुख भोगो वापस आ जाओ। इसलिए पुण्य पाप भी मिटने वाले हैं। और क्या चीज है ना मिटने वाला चीज? भक्ति कर्म है। इसलिए भक्ति कर्म कैसे किया जाता है, जैसे कथा श्रवण करते हैं आप लोग, अभी नाम जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान संबंधित क्रिया जो हम करते हैं प्रेमय सेवा, उससे उत्पन्न होने वाली भक्ति सुकृति, भक्ति उन्मुख सुकृति बोलते हैं उसको, वो कभी घटता नहीं है। वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो भगवान से संबंधित है। वो उसको अकर्म बोलते हैं भगवान कृष्ण गीता में, हमेशा आपके साथ आता है वो। और ये ऐसे पदार्थ है वो कि आपके साथ अगर आता है तो अगर पूर्व जन्म में आप लोगों ने कुछ भक्ति की होगा, किया होगा आपने, जिसके कारण अभी भी आपको भक्ति में थोड़ा रुचि वापस जागृत हो गया। जैसे आपको मालूम है भरत महाराज को एक हिरण का शरीर मिला था, लेकिन हिरण के शरीर में भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की याद किया, सोचा कि बड़ा गलती हो गया हमारे हाथ से, हम हिरण बन गए। अभी उनको इच्छा हुआ कि मैं हिरण के शरीर को छोड़कर एक मनुष्य जन्म प्राप्त करूं, और उनको इच्छा हुआ कि अभी मैं हिरण होते हुए भी मैं घास फूस खाने में मजे में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो वो पलाहाश्रम में गए, उधर ऋषि मुनियों के सान्निध्यता में रहे और उनकी संग किया, सदा भगवान की स्मरण किया उन्होंने हिरण के शरीर में भी। उसके बाद हिरण का मृत्यु हो गया, अगले जन्म में वो जड़भरत बने, बनकर भगवान का भक्त करके भगवधाम वापस लौटे ऐसे। तो इस तरह हमने पूर्व जन्म में किया हुआ, पूर्व जन्म अर्जित पुण्यम अग्रे धावती धावती, आपने जो पूर्व जन्म सुकृति किया है वो अगले जन्म में भी आपके साथ जाता है। तो पिछले क्लास में हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि पुण्य, भौतिक पुण्य से खूबसूरत शरीर, धनी खानदान में जन्म और अच्छा नौकरी, ये सब प्राप्त होता है, अच्छा पढ़ाई सब प्राप्त होता है, लेकिन वो सब मिटने वाली है। लेकिन भक्ति पुण्य जो है वो कभी मिटेगा नहीं। आपने 50% किया तो 51 से शुरू करेंगे आप अगले जन्म में ऐसे। इसलिए परीक्षित महाराज 4-5 श्लोकों में बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपसे, आप तो ऐसे कथा हमको बता रहे हैं जो हमें विष्णु के, भगवान कृष्ण के निकट लेके जाते हैं हमको, इसलिए और भी ऐसे कथा बताइए हमको, ऐसे बताते हैं। और छठे श्लोक से छठे श्लोक पढ़ लेंगे अभी भी। श्री शुक उवाच, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा च तथाविदा। इन दो श्लोकों में कुचैलम नहीं तो सुदामा, इनके पांच अच्छे गुण बताए गए हैं। देखिए उनका नाम क्यों कुचैला रखा गया, क्योंकि जो जिनका कपड़ा फटा हुआ है, जो गरीब है, उनको कुचैल नाम से पुकारा जाता है, ऐसे कपड़े पहने हैं, तो उनका नाम सुदामा भी है। उनके पांच गुण क्या है, पहला है ब्रह्मवित्तम बताते हैं, उनको अच्छी तरह शास्त्र के मर्म मालूम था, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे रिश्ता क्या है भगवान के साथ, तो उसके कारण वो विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया, ऐसे बताया गया है। विरक्त इंद्रिया मतलब इंद्रिय भोग में उनको मन नहीं था, लेकिन भगवान के भक्ति भावना में मन था उनको। देखिए भरत महाराज जो हैं, जंगल जाने के पहले जब छोड़कर गया, प्रभुपद बताते हैं जिस व्यक्ति के पास भोगने की वस्तु है लेकिन वो उनमें आसक्त नहीं है उसको वैरागी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास है ही नहीं, वो बोलता है कि हमारे पास है नहीं इसलिए हम वैरागी हैं, वो वैरागी नहीं माना जाता है। तो इसलिए वैरागी का मतलब है जिसके पास है, होने के बावजूद भी वो उनमें रमण नहीं करता है, वो भगवान की भक्ति में रमण करता है, ऐसे। इसलिए ये विरक्त इंद्रियार्थेषु बताया गया है। प्रशांत आत्मा का मतलब है वो शांत है, किसी तरह का लोभ नहीं है, जितेंद्रिय है। देखिए हिरण्यकशिपु के पास इतने ऐशाराम, इतने सुविधा थे, ऐसा बताया जाता है कि जब वो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकशिपु स्वर्गलोक में गया, जाकर बैठ गया इंद्र के पदवी, इंद्र के सिंहासन में बैठ कर सब देवताओं को नचाया, सबके ऊपर चिल्लाया, सब देवता अपने अपने पुरस्कार बेंट लेके आकर देते थे, महाराज जी ये बेंट लीजिए, चिल्लाता था वो, सब भाग जाते थे डर के मारे, ऐसे। तो इतना शराब पीकर उसके आंख हमेशा आग बबले रहते थे, ऐसे गोल गोल घूमते थे ऐसे, और सारे प्रकृति के ऊपर उसका नियंत्रण था, इतना तक कि कभी भी कहीं भी जाकर प्रकृति को कंट्रोल कर सकता था। इंद्र वरुण चंद्र वायु ये सब लोगों को रेजिग्नेशन देकर चले जाओ बोल दिया उसने, सब लोग रिजाइन करके चले गए, बोला कि आप सबके काम मैं करूंगा, अभी सूर्य की तापमान उसको कंट्रोल करना हमारा काम है, हवा को कंट्रोल करना, पानी को कंट्रोल करना, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया वो हिरण्यकश्यप। कभी भी कुछ भी चाहिए, अगर आजकल पुणे में सुबह बहुत ठंडी है, सूर्य की ओर बहुत देखकर बोलते थे ए इतना ठंडी क्यों है, सूर्य तुरंत अपना आग अपना तापमान बढ़ा देता था, वो सलाम मास्टर ऐसा करता था वो, उसको एयर कंडीशन इसकी जरूरत नहीं है, उसको सीधा कंट्रोल सूर्य को ही कंट्रोल है। ऐसे शाम को जाता था अगर धूप कड़ी है तो ऊपर देखकर बोलता आए हल्का बारिश, तो बारिश आता था, ऐसे जो कमांड करता था वो होता था। लेकिन उसको बोला जाता है कि एक राट, ऐसे बताया गया, एक राट का मतलब वो एक ही राजा था सारे ब्रह्मांड के उसके समय में, लेकिन उसके इंद्रिय उसके कंट्रोल में नहीं थे। इसके कारण एक पांच वयस का लड़का था जो बोला कि ओम नमो नारायणाय, ऐसे बोला उसने, उसके साथ बाकी सब प्रजा ओम हिरण्यकशिपुवे नमः ऐसे बोलते थे, लेकिन एक छोटा लड़का पांच उम्र का लड़का वो क्या बोला, ओम नारायणाय, तो इसका शांति उड़ गया इसका। बुलाया उसने वो बच्चे को, और उस बच्चे को मारने में इसका पूरा देखिए एक व्यक्ति का अगर मन और इंद्रिय संयम में नहीं है वो व्यक्ति खुशी से जी नहीं सकता है, वो सो नहीं पाएगा, आराम से जी नहीं पाएगा, वो हर क्षण तड़पता रहेगा, हर क्षण जलता रहेगा वो, जिसका मन और इंद्रिय संयम नहीं है। तो जिसका मन और इंद्रिय संयम में है उसको जितेंद्रिय नाम से पुकारा जाता है, और उसका ऑपोजिट क्या है, अजितेंद्रिय सो हिरण्यकश्यप अजितेंद्रिय था, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था वो। लेकिन ये सुदामा ब्राह्मण संतुष्ट था, इसलिए वो जितेंद्रिय था। जितेंद्र होने के कारण जो भगवान ने दिया उससे वो संतुष्ट था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अंग्रेजी में हमने कैसे सुना, इफ योर असेट्स आर मोर देन योर डिजायर्स देन यू आर अ रिच मैन। इसका मतलब क्या है, अगर आपके धन संपत्ति जो आपके पास है या आपकी इच्छाओं से ज्यादा बड़े हैं तो उसका मतलब है आप खुशी हो, आप संतुष्ट हो। लेकिन आपके इच्छाएं आपके धन संपत्ति से और ज्यादा है तो आप गरीब हो। तो अभी टाटा बिरला को पूछना पड़ेगा, टाटा बिरला वो गरीब है अमीर है? कैसे गरीब है, उसके उनके ऊपर निर्भर है उनका मन की भावना क्या है। अगर उनकी उनकी इच्छा उनके पैसा से ज्यादा है तो वो गरीब है, समझना आपने। अगर आपकी इच्छाएं आपके धन संपत्ति, अगर किसी को वेतन मिलता है 20,000, वो खर्चा करता है 12,000 और 8,000 सेविंग करता है, वो बुद्धिमान है? नहीं, तो कोई 60,000 कमाता है महीने में और 80,000 खर्चा करता है और कर्जा लेकर खर्चा करता है, करेक्ट ना? तो इसलिए ये भगवान के भक्त होने के कारण ये संतुष्ट थे, जो भगवान ने भेजा है उसमें संतुष्ट थे वो। ऐसे सुदामा ब्राह्मण की लक्षण बताए जा रहे हैं, इसलिए बताया गया यदृच्छोपपन्ने न वर्तमान गृहाश्रमी, वो गृहस्थ आश्रम में थे और हमेशा संतुष्ट और खुशी में रहते थे, ऐसे बताया जा रहा है कि। लेकिन उनकी धर्मपत्नी तस्य भार्या, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने सोचा कि वो अपने बारे में नहीं सोचती थी लेकिन अपने पतिवर के बारे में सोचा उन्होंने कि इनके हड्डी दिख रहे हैं शरीर में, इतने पतले हैं, कभी कभी 2-3 दिन साथ में भी खाते नहीं है कुछ है, तो उनके लिए कुछ तो चाहिए। इस तरह सोचकर उनके धर्मपत्नी उनके पास आकर बोला उन्होंने कि आपको जरूर कृष्ण के पास जाना चाहिए, आपके निकट मित्र हैं, आपके सुहृत हैं, कृष्ण आपके सखा हैं, द्वारका के द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, तो आप उनके पास जाओगे तो जरूर, वो तो भगवान हैं, सब ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वो आपको जो जरूरत है वो दे सकते हैं। तो अपने लिए नहीं मांगा उनके पत्नी ने लेकिन अपने पति के लिए मांगा उन्होंने। तो उसमें इधर बता रही है कि वो तो सब कुछ जो भी प्रभु जी सुदामा बोलेंगे कि ना बोलेंगे, उसकी जवाबी में पत्नी ने अलग अलग जवाब लेकर आया। जैसे सुदामा ने बोला उनको कि वो इस श्लोक में आता है, 9वां श्लोक में आता है वो, ननु ब्रह्मन् भगवतः सका साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। देखिए बता रही है ननु ब्रह्मन् भगवतः, आपको जरूर भगवान के पास जाना चाहिए क्योंकि वो आपके सखा हैं, आपके सखा साक्षात, ऐसे बताते हैं। तो ये बोलेंगे ठीक है मेरा सखा है, फिर भी जाकर मैं कैसे उनसे मांग सकता हूँ कुछ भी? तो बोल रहे हैं कि वो तो श्रीयपति हैं, वो तो लक्ष्मीपति हैं, तो लक्ष्मीपति होने के कारण आपको कुछ भी दे सकते हैं, वो देने की क्षमता है उनके पास। तो सुदामा ने बोला उनको कि ठीक है वो लक्ष्मीपति हैं लेकिन मैं तो दरिद्र हूँ, मैं तुम्हारा ही पति हूँ बस, वो लक्ष्मी के पति हैं। ऐसे एक दरिद्रपति उसके पास उनके पास जाकर कैसे मांग सकता है? तो बोलते ब्रह्मण्य है, उसका मतलब है वो भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। ब्रह्मण्य है मतलब ब्राह्मण, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनसे भगवान को बहुत प्रेम है, इसलिए आप जाएंगे तो आपके ऊपर ध्यान देंगे भगवान, ऐसे बताती है। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है मैं भी ब्राह्मण हूँ और अनेक ब्राह्मण हैं और हर एक ब्राह्मण के तकदीर में जो भी लिखा है उतना ही मिलता है उनको, इसलिए भगवान तो सबके ऊपर एक समान ध्यान देते हैं, सब उनके बच्चे हैं, तो हमारे ऊपर खास ध्यान कैसे देने वाले हैं, ऐसे पूछते हैं। तो बोलती है शरण्यश्च, देखिए अगर कोई भगवान के पास जाकर शरण लेता है तो भगवान ऐसे भक्त को खास उनका ख्याल रखते हैं, जैसे माता जो है स्कूल में जाती है अपने बच्चे को लाने के लिए, सैकड़ों बच्चे भाग रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को ढूंढ रही है वो, है ना। वो बच्चा जब आएगा तुरंत दोनों के आंख एक दूसरे आंख से मिलते हैं, तुरंत वो बच्चे को अपने गोद में ले लेती है, है ना। इस तरह भगवान भी सब जीवों को खाने पीने की व्यवस्था करते ही हैं भगवान, नास्तिकों को भी करते हैं भगवान, नहीं तो नास्तिक लोग बोल भी नहीं पाएंगे, है? उनके लिए धान्य भी देते हैं, बारिश भी देते हैं, सब देते हैं भगवान। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर खास ध्यान देते हैं। इसका प्रूफ क्या है सब लोग दोहराइए पीछे, ये भगवद गीता के श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये नमामुपयान्ति ते। देखिए अर्जुन, अगर कोई मेरा सतत मेरे सेवा में जुड़ा है और प्रीति के साथ मेरा भजन करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में मैं दिव्य ज्ञान को देता हूँ, उनको प्रदान करता हूँ, जिससे वो भक्त मेरे पास वापस लौट सके। ये मैं सबको नहीं करता हूँ, किसको करता हूँ? जो प्रीति के साथ मेरे भजन करते हैं और सदा मेरे सेवा में जुड़े हैं उनको मैं खास ध्यान देता हूँ, उनको बुद्धि देता हूँ। भगवान ऐसे बताते हैं। देखिए विभीषण तो था लंका में, लेकिन जब एक बार आपको मालूम है विभीषण को नकार दिया रावण ने, भगा दिया, तो तभी विभीषण 3-4 राक्षसों के साथ आकर आकाश मार्ग में उड़ते हुए वानर सेना को देखा उन्होंने ऊपर से। तो वानर सेना के लोगों ने सोचा कि ये आया है हमको अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, सब तैयार हो जाओ इसके साथ लड़ने के लिए। तभी विभीषण ने बोला, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, शरणागति लेने के लिए आया हूँ रामचंद्र के पास। तभी सब बंदर जैसे सुग्रीव, हनुमान, नाला, नीला सब लोग गए रामचंद्र जी के पास और सब बोला, रामचंद्र ने पूछा उनको, आपका मत क्या है, क्या इसको अपन हमारे ग्रुप में लेना चाहिए कि नहीं, ये बंदरों के इसमें पक्ष में। तो सुग्रीव ने बोला, देखो ये असुर राजा लंका नरेश रावण के पार्टी से आया है, हो सकता है जासूस है, हमारे बीच में रहेगा और इधर के बातों को उधर बता देगा, ऐसे दुश्मनों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तुरंत मार डालना चाहिए इसको, ऐसे बोला। किसने? सुग्रीव ने ऐसे बोला। तो भगवान ने पूछा, इनको पूछा, ये वाली के बेटे उसका नाम क्या है, अंगद, अंगद को पूछा, उसने बोला कि देखिए भगवान अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन इसके पीछे एक जासूस लगा दीजिए, किधर भी जाता है बाथरूम जाता है पीछे पीछे जाना चाहिए कोई, हाँ इधर जा खाने के लिए जाता है जाना चाहिए, किसको फोन करता है देखना चाहिए, क्या बोलता है, ऐसे एक लगा देंगे ना तो उसको ले भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अलग अलग लोगों को पूछा, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोले। अंत में सब बंदरों ने पूछा रामचंद्र को, हमारी मत हमने बोल दिया, आपकी मत क्या है, आपने अभी तक बोला नहीं। तभी भगवान रामचंद्र ने एक एक सुंदर शरणागति का एक श्लोक बोला, सकृदपि प्रपन्नोयम, सब लोग बोलिए, सकृदपि प्रपन्नोयम तवः अस्मि इति याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम् मम। तो रामचंद्र ने बोला, हे सुग्रीव सुनो मेरी बात, सकृत अपि प्रपन्नोयम, सकृत का मतलब है एक बार भी अगर कोई मेरे पास सामने आकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे भगवान मैं आपका हो गया हूँ, आपकी हो गई हूँ, ऐसे तवा अस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै, उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। सर्वदा का मतलब है हमेशा के लिए वो व्यक्ति मेरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई शिष्य राधा वृंदावन चंद्र के सामने जाकर बोलते हैं कि हे भगवान मैं आपका हो गया हूँ, आप स्वीकार दीजिए, एक ही बार बोल रहे हैं सकृदपि, तो भगवान उस व्यक्ति को अपना मानते हैं और बोलते हैं कि अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम् मम, ये मेरा व्रत है, मैं ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे भक्त कुछ गलत दिशा में भी जाएगा मैं उसको लाफा देकर लेके आऊंगा वापस। तो एक भक्त था इस्कॉन अमेरिका में, एक मंदिर में, अचानक उसको मन में लगा कि अभी हमने भक्ति बहुत कर लिया, दो तीन साल थोड़ा माया नगरी माया दुनिया को भी देखना है, यह क्या हमेशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसने सोचा, तो उसको इच्छा हुई कि मैं समुद्र में जाकर सर्फिंग करूंगा। सर्फिंग मालूम है आपको? सर्फिंग करते हैं, खेलते हैं समुद्र में। तो उसके मित्र लोग खेलते थे, वो भी खेलने के लिए गया, लेकिन सर्फिंग करते करते बड़ा एक शार्क आ गया। शार्क मालूम है आपको? हाँ, शार्क एक मछली, बड़ा मछली है। शार्क आकर अपने मुंह खोल कर दिखाया ऐसे। तो समुद्र के किनारे तो उस साइड में था, इधर सर्फिंग कर रहा है, इधर बीच में आ गया शार्क। तो उसने सोचा कि इधर तैर कर उधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो उधर निकल लेगा मुझे। तो भगवान को पुकारा उसने, हे भगवान बचाओ बचाओ। भगवान का नाम पुकारा, हरे कृष्ण पुकारा, पता नहीं शार्क गायब हो गया कहीं। तो तुरंत वो स्विम करके वापस आके मंदिर में लौटा गया वो। अभी जान बच गया, बचा हुआ जान दे देंगे भगवान को वापस ऐसे। इसका मतलब क्या है? भगवान छोड़ते नहीं अपने भक्तों को, अगर छोड़ कर भी जाते हैं भगवान पकड़ कर लेके आते हैं। ऐसे हम असली कथाएं सुनते हैं इस्कॉन में। एक भक्त था, उसको मंदिर छोड़कर वो एक एरोप्लेन में जा रहा था कहीं और। कभी कभी लोग जाते हैं ना, गोवा जाते हैं घूमने के लिए इस तरह। तो ऐसे कोई जा रहा था, सोचा कि अभी भक्ति को छोड़ देने का। हमने सुना है कि अगर भक्ति किया तो अगले जन्म में वापस भगवान के पास अंत में जाना ही है ना, अभी जाने के बदले बाद में जाएंगे हम, ऐसे सोचकर। तो फ्लाइट में जाकर जब बैठा, सोचा कि बहुत सुन लिया नाम, अभी शांत में हम बैठेंगे नाम के बिना। तो अचानक सुनाई दिया, अरे कृष्ण अरे कृष्ण 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 अरे 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 राम अरे राम राम। तो मुड़कर देखा एक सन्यासी बैठे थे, वो जप कर रहे हैं। तो तुरंत तो ऐसे एक ईयर प्लग लेकर लगा लिया उसने, ताकि सुनूंगा नहीं। तो एयरपोर्ट में उतर के नीचे गया, तो उधर माता जी लोग प्रभु जी लोग अपने हाथ में प्रभुपाद की किताब लेकर उतरन करते, प्रभु जी किताब लीजिए। तो कहीं भी गया वो कृष्ण ही दिख रहे थे उसको। तो समझ गया कि कृष्ण छोड़ने वाला नहीं, तो कृष्ण के पास आ गया वो वापस। तो एक बार आप शरण जाइए कृष्ण के पास, आप देखेंगे कृष्ण आपको याद दिलाते रहेंगे। और जब हम गलत चीज करने के लिए इंसान जाता है, भगवान बोलेंगे ये गलती करना चाहते हो, नरक में जाओगे, आ जाओ मेरे पास। इस तरह जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को वापस अपने पास लाते हैं, इस तरह भगवान लाते हैं। तो इस तरह भगवान ने बताया है, इसको शरण्य है का मतलब है, आपने शरण लिया है तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं कभी, ये भगवान का एक लक्षण है, ऐसे बताते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि आप भगवान के भक्त हो तो भगवान आपको ना कैसे बोलेंगे, आपकी आपको रक्षा करना भगवान का काम है। योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान खुद ही बोलते हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए जरूर, ऐसे बताते हैं। तो वो बोलते हैं सुदामा, ठीक है मैं, आप बोल रहे हो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसे तो भगवान के अनेक भक्त हैं, कोटानुकोटि भक्त हैं, मैं क्यों भगवान के पास जाकर मांगू। वो बोलते हैं भगवान सात्वत ऋषभ, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण व्यक्ति हैं, सब ऐश्वर्यों का मालिक हैं भगवान, वो सात्वत ऋषभ है, भक्तों का लीडर है वो, इसलिए आप जरूर जाने। और एक मीनिंग है इसका, सात्वत ऋषभ का, वो यदुओं के नायक हैं भगवान, इसलिए आप चिंता मत करिए। अगर आपको पूछने की कुछ संकोच है तो जाकर सिर्फ खड़े रहिए सामने, भगवान तो अंतर्यामी है सबके हृदय में, जान ही लेंगे आपको क्या जरूरत है, इसलिए आप चिंता मत करना, आप सिर्फ जाकर आना, ऐसे बोलती है। तो इस तरह विनती करती है। देखिए 11वें श्लोक में बताते हैं, आस्ते धुना द्वारवत्याम भोज वृष्ण्यंधक भोज वृष्ण्यंधकेश्वरः स्मरतः पादकमलम् आत्मानमपि यच्छति। देखिए स्मरतः पादकमलम् आत्मानमपि यच्छति, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हैं, स्मरतः पादकमलम् भगवान के पादकमलों को, आत्मानमपि यच्छति, उनको अपने आप को ही दे देते हैं भगवान, ऐसे बताते हैं। एक श्लोक है 11वें स्कंद में, भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे उद्धव तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो, शिव जी से भी ज्यादा प्रिय हो, ब्रह्मा से भी ज्यादा प्रिय हो, तुम मुझे मेरे से भी ज्यादा प्रिय हो, भगवान ऐसे बताते हैं उद्धव को। मेरे भक्त भक्तों को मैं मेरे से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। देखिए हम लोग एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो व्यक्ति को हम आईने के अंदर देखते हैं, मालूम है कौन? हाँ, अपने आप को। इस दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है कि मैं किसी को मेरे से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, वो भगवान ही बोल सकते हैं इसे है? अपने भक्तों को वो अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं इसे। इसलिए बताते हैं इधर, स्मरत है पाद कमलम आत्मान पियचति, जो उनका स्मरण करते हैं भगवान उनको अपने आप को भगवान दे देते हैं। देखिए द्रौपदी ने एक बार भगवान को पूछा, हे कृष्णा, वो कृष्ण के एक सखा है द्रौपदी भगवत धाम में वैकुंठ में, इसलिए जिस तरह पांडव पंच पांडव उनके पार्षद हैं, इस तरह द्रौपदी भी एक सखा के रूप में पार्षद है वैकुंठ में। तो उन्होंने पूछा भगवान को, ऐसा क्यों आपने किया, इतना देरी से आए आप, इसके कारण मेरा चिंता इतना बढ़ गया था। हा? आप तो इतना लंबा साड़ी दी आपने, लेकिन वो देने में थोड़ा समय लग गया आपको, क्यों इतना देरी किया आपने? तो भगवान बोले, हे द्रौपदी, मुझे याद है कि आपने पुकारा था, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे द्वारकावासिन, हे गोपीजन वल्लभाई से, लेकिन वो पुकारने के पहले मैंने देखा जब दुशासन वस्त्र हरण करने की प्रयत्न कर रहा था, तो आपने मुड़कर अपने पांच पतियों की ओर देख रही थी आप रोते हुए, उसके बाद आप भीष्म पितामह, द्रोण, धृतराष्ट्र उनकी ओर देख रहे थे, रोती है, चिल्लाती है, साड़ी को पकड़ी है, लेकिन अलग अलग लोगों की ओर देख रहे थे, उसके बाद आप समझ लिया कि कोई बचाएंगे नहीं, तो अपने दांतों से पकड़कर अपने आप को बचाने की प्रयत्न कर रही थी, तो आपने पुकारा नहीं इसलिए मैं आया नहीं, भगवान बोले ऐसे। लेकिन जब तुमने पुकारा मैं तुरंत आ गया, मैं तभी समझ गया द्रौपदी ने कि लेकिन जो स्मरण करते हैं भगवान की, भगवान तुरंत उन भक्तों को आकर अपने दर्शन देते हैं, अपने सानिध्य को प्रकट करते हैं। जैसे आपको मालूम है मुचुकुंद राजा ने बहुत अच्छी तरह भक्ति की थी, लेकिन जब एक गुफा में लेट कर सो रहे थे अगले जन्म में, तो भगवान ने आकर उधर उनको उठाकर दर्शन दिया उनको। मुचुकुंद को भी आश्चर्य था कि कौन है व्यक्ति कमल के ऊपर खड़े हैं, एकदम सुंदर दिख रहे हैं, चतुर्भुज वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, इतने नीलमणि के बराबर एकदम चकाचक इतने सुंदर दिख रहे हैं। तो उनको पता नहीं था, पूछ रहे थे, आप सूर्य हो क्या, आप चंद्र हो क्या, आप अग्नि हो क्या, वायु हो क्या, नहीं तो आप इंद्र हो क्या, नहीं तो आप लगला है कि आप, तो अलग अलग नाम वो पूछ रहा था। भगवान बोले कि हे मुचुकुंद राजा, मालूम नहीं आपको मैं कौन हूँ, आप मेरे शुद्ध भक्त थे आपके पूर्व जन्म में, तो आपने इतना भक्ति किया इसलिए आपको दर्शन देने के लिए मैं आया हूँ। तुरंत उनको याद आ गया कि हमारे ही मास्टर हैं भगवान, आ गए हैं। तो इस तरह भगवान देखते हैं कि अपने भक्तों को भूलते नहीं, जिन्होंने स्मरण किया है भगवान अपने आप को देते हैं ऐसे भक्तों को। स्मरत है पाद कमलम आत्मानम पियच्छति, तो ये बोलती है कि भगवान अपने आप को दे देते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सोना चांदी क्यों नहीं देंगे आपको, तो आप तो भगवान के महान भक्त हैं, आपको जरूर जाना चाहिए ऐसे। तो इस तरह बार बार अपने धर्म पत्नी के विनत उन्होंने उनके बात सुनकर उसके बाद अगले श्लोक जाइए, 12th श्लोक। स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मुहुः, बार बार उनके भार्या ने विनती की, जाइए 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 ऐसे। तो सुदामा ने बोला कि शायद कृष्णा अभी तो हस्तिनापुर गए होंगे, तो उनकी पत्नी ने बोला नहीं नहीं हस्तिनापुर में सब युद्ध सब हो गया, सब असुरों असुर लोग मारे गए, बस अभी भगवान उस तरह असुरों को मारने से रिटायर हो गए अभी, अभी द्वारका में बैठे हैं अपने सिंहासन में, द्वारकाधीश हैं, अपने सब भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये सही समय है आपको जाने के लिए, जरूर जाइए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, उन्होंने बोला कि ठीक है, अपने मन में सोचा सुदामा ने, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, तो मुझे परम लाभ प्राप्त होगा मैं द्वारका जाऊंगा तो क्या लाभ है, वो बोल रहे हैं कि उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान की दर्शन मुझे प्राप्त होगा। उनके धर्मपत्नी सोच रहे कि कुछ धन दौलत इकट्ठा करके आएंगे, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं मन में, भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा, ऐसे सोच रहे हैं। देखिए इस दुनिया में सब लोग लाभ का मतलब है तुरंत पैसा का ही याद आता है लोगों को, लाभ बोलो तो, लेकिन परम लाभ ऐसे चीज है जो आपको प्राप्त हुआ कभी मिटने वाला चीज नहीं है, वो परम लाभ है। परम लाभ बताते हैं तो मुझे परम लाभ मिलेगा, क्या है वो, भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त होगा। यह दर्शन अभिलाषीते कौन, सुदामा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को भगवान का दर्शन हो गया वो इस दुनिया के किसी भी चीज उसको आनंद नहीं देंगे उसको, क्योंकि अगर देखिए पहले अगर आप हलवा खाते थे, किसी ने आपको पूरण पोली दिया, आपको मालूम है पूरण पोली महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, तो आपको पूछा जाता आपको हलवा चाहिए पूरण पोली चाहिए, क्या मांगेंगे आप, कितने लोग पूरण पोली मांगेंगे, अरे ठीक है ठीक है, अभी पूरण पोली चाहिए आपको गुलाब जामुन चाहिए, क्या बोलेंगे, दोनों अच्छा है, कंफ्यूजन है लेकिन कम से कम आप पूरण पोली और हलवा में फर्क जानते हैं आप, है ना। एक हायर टेस्ट मिल जाता है, हम लोअर टेस्ट छोड़ देते हैं हम, करेक्ट है ना। अगर आपके पास एक बड़ा महाप्रसाद प्लेट है तो एक सूखा रोटी है तो सूखा रोटी को फेंक देंगे आप, है ना। इस तरह दुनिया के सब सूखा रोटी के बराबर है भगवान के दर्शन के सामने। भगवान के दर्शन जब प्राप्त होता है, जिस भक्त के आंखों ने भगवान के दर्शन किया है उसको प्रेम का आंक बताया जाता है, प्रेम चक्षु है। उस प्रेम चक्षु के अंदर हमेशा भगवान रहते हैं। भगवान का एक लक्षण है, अक्षुद्ध भक्त जब भगवान को एक भी बार देख लिया है तो भगवान उनके चित्त में बस जाते हैं, कभी छूटते नहीं। जैसे उन दिनों में एक लाल रंग वाला एक मोमबत्ती रहता है, उससे सील करते हैं, मालूम है आपको, सीलिंग करते हैं, सील करने के लिए यूज करते हैं पैकेट में ऐसे, हाँ। तो उसमें अलग अलग रंग आता है, कभी लाल आता है, कभी पीला आता है, कभी एक्चुअली वो कभी कभी सफेद कलर का होता है मोमबत्ती, लेकिन उसमें कुछ टर्मरिक हल्दी नहीं तो कुमकुम डालकर उसको लाल किया जाता है इसे। तो जब पिघला हुआ मोमबत्ती जो होता है उसमें अगर आप हल्दी डाल देते हैं, कुमकुम डाल देते हैं, वो सील बनाने के बाद सूख जाता है तो कभी बाहर नहीं निकलेगा वो, करेक्ट है ना। जब द्रव्य अवस्था में डाला हुआ पाउडर जो है वो सॉलिड होने के बाद वो निकलेगा नहीं। यह उदाहरण दिया गया है भागवत में। एक बार नारद मुनि जब गए वृंदावन में तब देखा उन्होंने गोपियां बैठकर ध्यान लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा ध्यान क्यों कर रही हो, तो उन्होंने बोला कि उद्धव जी ने सिखा है हमको ध्यान करने के लिए, तो ध्यान क्यों कर रही है, तो गोपी ने बोला कि हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं भगवान कृष्ण को हमारे हृदय से निकालने के लिए। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे सारे दुनिया के लोग कृष्ण को पकड़ने के लिए ध्यान लगा रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो, कृष्ण को निकालने। वो बोले कि हम कुछ भी कार्य करें सुबह से लेकर रात तक सदा उनका स्मरण आता रहता है मन में, वो तो खुशी में है लेकिन हम विरह में है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तभी नारद मुनि ने यह बात बोला उनको, जो भक्त ये अपने हृदय के द्रवत अवस्था में, द्रव के अवस्था का मतलब जब हृदय पिघलता है कोई भक्त का भगवान के नाम पुकार कर, आंखों में आंसू है, हृदय पिघलता है, तो इस तरह भगवान का नाम पुकारता है तब भगवान घुस जाते हैं उसके हृदय में, कभी निकलेंगे ही नहीं वो, क्योंकि अंदर ही बस जाते हैं उनके चित्त में, सदा बार बार उनके सुंदर रूप, उनके लीला, उनके नाम सब स्मरण आता रहता है ऐसे भक्तों को, ऐसे बताया नारद मुनि ने, इसलिए आप लोग कभी निकल नहीं पाएंगे भगवान को, ऐसे बोला उन्होंने, समझा ना आपने। जिस तरह माँ बाप बच्चे, एक बच्चे की बच्चे को नहाना धुलाना कपड़े पहनाना पाउडर डालना उसको सजाना करते 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 बच्चे उसके उनके चित्त में बस जाता है बच्चा, करेक्ट है ना। किसी भी माँ को पूछिए बच्चे के अनुपस्थिति में भी वो बच्चे का चेहरा उनके छवि बना बनकर रहता है उनके चित्त में रहता है, ऐसे किसी भी माँ को पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इतना इंटरेक्ट करते हैं बच्चे के साथ, उनका इंटरेक्शन है, क्या बोलते हैं इंटरेक्शन, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है बच्चे के साथ, इसलिए वो याद रखते हैं। इस तरह पति पत्नी भी और शादी के बाद पति पत्नी के बीच में आकर्षण बहुत रहता है, तो लेकिन बच्चे होने के बाद दोनों का अटेंशन बच्चे की ओर चला जाता है उसके बाद ज्यादा। लेकिन हम देख सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ हम रेगुलरली हम आदान प्रदान करते हैं उनका चित्र छवि हमारे छवि बन जाता है हमारे हृदय में। तो भगवान के भक्त का मतलब क्या है, हम जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं भगवान के व्यवहारों को देखकर भक्त के हृदय में प्रेम जागृत होता है, उनका हृदय पिघलता है, और इस तरह की कथाओं को सुनकर भक्त के हृदय में जब आनंद जागृत होता है तभी भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। और इस तरह जब भगवान बस जाते हैं उसके बाद हम बार बार अलग अलग विविध कथाएं सुनने से, महाभारत को खोलो तुरंत हम देखते हैं कि कृष्ण ने क्या बोला है, क्या लीला किया है, ऐसे इच्छा होता है। उसमें इतना लड़ाई होता है, इसने इसको मारा उसने इसको मारा, ठीक है सब मारा, कृष्ण के इधर इधर कृष्ण को ढूंढो। हाँ, किसी भी किताब को खोलो हम कृष्ण को ढूंढते हैं हम, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर हमें प्रेम है उस व्यक्ति को ही हम ढूंढेंगे। अगर एक माता स्कूल में जाती है अपने बच्चे को ही ढूंढेगी, है ना। इस तरह अगर कोई प्रेमिका है प्रेयसी है वो एक दूसरे को ही ढूंढेंगे, बड़े भीड़ भाड़ में भी उनको ही ढूंढेंगे। इस तरह ऐसे प्रेम को जागृत करना ही जीवन का लक्ष्य है ऐसे। इसलिए इधर बताते हैं उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान के दर्शन के लिए इनके हृदय में एक लालसा है। ये लालसा होना बड़ा भाग्य माना जाता है, क्योंकि देखिए भगवान का दर्शन होता है लेकिन दर्शन के लिए इच्छा भी होना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। क्योंकि कभी कभी हम रूटीन दर्शन ले सकते हैं, ठीक है मंदिर में जाना भगवान को दंडवत प्रणाम करना प्रदक्षिणा करना ये रूटीन हो जाता है, लेकिन जो अपने मन और चित्त को लगाकर भगवान के दिव्य कथाओं को सुनते हैं पढ़ते हैं हम, वो जब कृष्ण को देखते हैं वो साधारण आंखों से नहीं देखते हैं, कृष्ण को जब देखते हैं जानते हैं कि यही कृष्ण है जिनके पदकमलों इनके पदकमलों से उन्होंने ये ब्रह्मांड को छेद कर विरजा के पानी को गंगा के रूप में नीचे लाया उन्होंने, यही पदकमल है जो एक पत्थर को चुने से एक अहिल्या निकली बाहर, और यही पदकमल है जिसको भगवान ने बलि महाराज के सर के ऊपर रखा था, और यही भगवान है जो एक महाविष्णु के रूप में विस्तारित हुए हैं, गर्भदक्ष विष्णु के रूप में विस्तारित हुए हैं, जिनके नाभि से कमल उगता है और उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और इस तरह भगवान को देखकर तुरंत भगवान के लीला चेष्टाएं याद में आता है, और यही कृष्ण है जिन्होंने कालिया के ऊपर नर्तन किया, यही कृष्ण है जिन्होंने आग को पी लिया जंगल में अपने गोप बालकों को गायों को बचाने के लिए, यही कृष्ण है जिनके आंखों के अमृत वर्षा अमृतपात से सब गोपगण जो मर चुके थे अगासुर के मुख में वो सब जग गए। इस तरह भक्त को भक्त के हृदय में सब भगवान के लीला चेष्टाएं मन में याद आते हैं, और इसके कारण हर दिन जब भक्त दर्शन लेता है वो भगवान उसके हृदय में अनेक भावनाओं को उठाते हैं, जिसके कारण दर्शन में आनंद प्राप्त होता है भक्त को भगवान के दर्शन। इसलिए हर दिन दर्शन लेने की इच्छा होता है, मन में प्रार्थनाएं उठते हैं, और उन प्रार्थनाओं को भगवान को बार बार बोलने से और प्रेम बढ़ता है इसे। तो ये भी सोच रहे हैं कि हो मुझे भगवान को दर्शन करने के लिए लाभ प्राप्त होगा, मुझे पैसा मिले या ना मिले लेकिन भगवान को देखूंगा मैं, इस तरह खुशी से जा रहे हैं। ऐसे ही अक्रूर भी जा रहे थे वृंदावन, वृंदावन जाने के पहले अक्रूर ने बोला कि ये दुष्ट राजा कंस ये बुला रहा है कृष्ण बलराम को, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे कृष्ण बलराम के दर्शन मिलेगा मुझे, इस तरह के अभिलाष के साथ वो जा रहे हैं। इति समचिंत्य मनसा गमनाय मतिं दधे, इस तरह सोचकर अपने मन में उन्होंने सोच लिया कि जरूर मैं जाऊंगा अभी। अप्यस्त्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, ठीक है मैं जाऊंगा लेकिन खुले हाथ मैं कैसे जा सकता हूँ, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा मुझे मेरे सखा कृष्ण को देने के लिए, कुछ उपायनम कुछ तो बेंट लेके आओ, ऐसे बोला अपने पत्नी को। देखिए भगवान के भक्त हमेशा भगवान को मिलते समय कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। तो ये वैदिक संस्कृति जो है वो देने का संस्कृति है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह घर में जब कुकिंग करते हैं माँ रसोई घर में, उसके बाद क्या करते हैं, कुछ चावल लेकर करके ऊपर डालते हैं कौओं को खाने के लिए, कुछ भिखारियों को देते हैं, इस तरह है। तो वैदिक संस्कृति देखेंगे हमेशा कुछ शादी में जाते हैं, कुछ बेंट लेकर जाकर देते हैं, ऐसे हैं। तो दान धर्म करना भगवान के लिए, कुछ फूल लेके जाना, फल लेके जाना, ये आदत है वैदिक संस्कृति में। तो ये तुरंत इनको लग रहा है कि मैं कुछ तो लेके जाना चाहिए मेरे साथ में, वो तो गरीब लोग हैं, उनके पास क्या है, कुछ नहीं है घर में। इसलिए अगले श्लोक में बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडे नतान भद्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। तो आसपास पड़ोसों के पास जाकर उनकी पत्नी चार मुष्टि, हाँ, ये पोहे लेके आई और उसको एक ये कपड़े में बांधकर अपने पति के पास दिया उन्होंने। सतानादाय विप्राग्रयः प्रययौ द्वारकां किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। वो द्वारका जाते जाते वो मार्ग में उन्होंने सोचा कि कृष्ण दर्शनम मह्यम कथम स्याद, कैसे मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, कृष्ण तो इतने बड़े हैं, वो श्री का पति हैं, वो द्वारका के राजा हैं, बड़े बड़े महल में रहते हैं, अनेक द्वारपालक होंगे, क्या मुझे अंदर छोड़ेंगे कि नहीं, और कृष्ण को अगर छोड़ेंगे भी क्या मुझे कृष्ण पहचानेगा, मुझे गुरुकुल के दिनों में हमने साथ में रहा है लेकिन अभी कृष्ण पहचानेंगे कि नहीं पता नहीं, भूल गए होंगे, अपने ही कामकाज में राजकाज में व्यस्त होंगे, क्या उनको दर्शन करने के लिए मुझे मौका मिलेगा क्या, ऐसे वो सोच रहे थे। ऐसे इस तरह सोचते हुए आगे जब गए, अगले श्लोकों में 16वां श्लोक में बताया गया है कि जब द्वारका में प्रवेश किया उधर हजारों बड़े बड़े महल थे, उधर सब सुंदर महल थे। आप पढ़ेंगे भागवत के दशम स्कंद में वर्णन है, द्वारका का वर्णन है, कैसे उधर भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी करके हरेक रानी को एक एक महल दिया था भगवान ने ऐसे। हाँ, तो जब आपको मालूम है ये जो बहुमासुर को पराजित करके मार कर भगवान ने शादी किया 16,000 रानियों के साथ, है ना। तो ऐसा बताया गया है कि हरेक कन्या जो थी उसके रूप के अनुसार भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया 16,000 रूपों में। अगर कोई छोटे तो भगवान भी छोटा रूप धारण किया, कोई बड़े थे बड़ा रूप धारण किया भगवान ने ऐसे, लेकिन भगवान कृष्ण का ही विस्तारित रूप ऐसे मैच होने के लिए भगवान ने ऐसे विस्तारित किया। तो ऐसे सबको एक्सपैंड करके सबको एक एक पैलेस दिया, एक एक महल दिया उनको, साड़ी आभूषण सब व्यवस्थाएं की भगवान ने। तो नारद मुनि एक बार जब आए उधर द्वारका में आकर देखने के लिए भगवान को, तो एक महल में भगवान बैठे थे रुक्मिणी के साथ, वो शतरंज खेल रहे थे भगवान। तुरंत उठकर भगवान आकर नारद मुनि को दंडवत प्रणाम किया, बोला कि हे ऋषिवर, इतना बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे महल में आए हैं, आइए आइए। उनको बिठा कर पद कमलों को दुलाया, उन्होंने पानी अपने सर के ऊपर ले लिया और उनकी प्रशंसा की। तो नारद मुनि अगले महल में गए, उधर उन्होंने देखा कृष्ण के एक घोड़े के ऊपर सवार होकर, व्हाट इज स्वॉर्ड फाइटिंग, जो स्वॉर्ड मालूम होगा, तलवार लेकर उसका प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे वो। नारद मुनि को देखकर तुरंत वो घोड़े से नीचे कूद गए भगवान और दंडवत प्रणाम किया नारद को। और जिस तरह उन्होंने पूर्व महल में बोला ऐसे ही बोला अभी भी, हे ऋषिवर आ जाइए बैठिए, आपके पांव धोता हूँ, हमारा बड़ा भाग्य है। नारद मुनि बोलते अभी भी बोला, अभी वापस बोल रहे हैं वो ही, ऐसे सोच रहे थे। तीसरे महल में गए, उधर भगवान ऐसे यज्ञ कर रहे थे, आहुति दे रहे थे, अनेक ब्राह्मण लोग बैठे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। तो नारद मुनि जाते ही भगवान उठ गए तुरंत, दंडवत प्रणाम किया, आइए ऋषिवर बैठिए, आपके पांव धोता हूँ मैं। हमारा बड़ा भाग्य, ऐसे बोल रहे थे। तो नारद मुनि ने देखा कि अरे अलग अलग महल में अलग अलग कार्य चल रहा है। और एक महल गए, उधर देखा उन्होंने भगवान ब्राह्मण को प्रसाद परोस रहे थे खुद ही। ब्राह्मण लोग कहा रहे थे नारद को देखकर उनको स्वागत करने के लिए भगवान आ गए। ऐसे ऐसे सब 16,108 महलों में गया नारद मुनि। लास्ट महल में जब गए नारद, तभी भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान ने बोला, हे नारद, ये समझो कि ये धर्म के तत्वों को देने वाला मैं ही हूँ, धर्म को पालन करने वाला मैं हूँ, और धर्म को जो नहीं पालन करते असुर, उनको मारने वाला भी मैं ही हूँ। इस तरह मैं इस दुनिया में आकर लीला करता हूँ। मेरे भक्त लोग रमण करते हैं लीलाओं में, और साधारण लोग सीखते हैं, सबक सीखते हैं, और ना मानने वाले असुर उनको मैं मारकर उनको शुद्धिकरण करता हूँ। इस तरह भगवान बोले। तो नारद बोले कि हे भगवान, इतना मधुर लीला आप कर रहे हैं, मैं सारे दुनिया को जाकर बताऊंगा इसके बारे में। ये तो इस तरह बताते हैं नारद। तो इस तरह द्वारका में भगवान लीला कर रहे हैं। देखिए, उनकी धर्म पत्नियों ने सोचा कि हमारा पति भगवान कृष्ण, तो जिस तरह बोलते हैं जोरू का गुलाम बोलते हैं ना, हैंडपेक्ड हस्बैंड, इस तरह वो हमारे महल में आ जाते हैं हर दिन, किसी और रानी के पास जाता ही नहीं है वो, हमको इतना प्रेम करता है। ऐसे कौन सोच रही थी? हर रानी सोच रही थी ऐसे। उनको मालूम नहीं था कि भगवान एक्सपेंड करते हैं अपने आप को इतना 16,108 रूपों में भगवान ऐसे। तो इस तरह हर एक रानी को उन्होंने संतुष्ट किया भगवान ने ऐसे। तो सुंदर वर्णन है भागवत में ऐसे। तो ये जब गए सुदामा, एक महल के सामने जाकर खड़े रह गए। वो क्या महल था? वो महल था रुक्मिणी जी का महल था। तो बाहर खड़े थे दरवाजे में, द्वारपाल भी खड़े थे। तो अभी आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं, 18वां श्लोक। तम विलोक्याच्युत दूरात्, तम विलोक्याच्युतो दूरात्, प्रिया पर्यंकमास्तितः सहसोत्ताय चाभ्येत्य दोर्भ्याम पर्यगृहीन मुदा। ये बताते हैं तम विलोक्य, भगवान ने देखा दूर से दरवाजे में, दो द्वारपालों के बीच में सुदामा खड़ा है। तो सुदामा को बहुत संकोच हुआ द्वारपालन को बोलने के लिए कि कृष्ण मेरा मित्र है, हमारे सखा है कृष्ण, उनको मिलना है। तो उन्होंने सोचा कि क्या ये लोग छोड़ेंगे कि नहीं। लेकिन दूर से भगवान देख रहे हैं उनको। तम विलोक्य अच्युतो, भगवान कृष्ण दूरात, दूर से। प्रिया पर्यंकम आस्थितः, प्रिया का मतलब है रुक्मिणी जी, उनके रुक्मिणी के साथ उनके बिस्तर में आसन में बैठे थे भगवान। रुक्मिणी जी भी बैठी थी, वो भी बैठे थे निकट। तो उधर से उन्होंने देखा, सहस उत्ताय चाभ्येत्य का मतलब है तुरंत उठकर भगवान दौड़ पड़े सुदामा की ओर। तोर्भ्या पर्यग्रहीन मुदा, बहुत आनंद के साथ मुस्कुराते हुए अपने पुराने मित्र को मिलते हुए भागकर क्या क्या उन्होंने, सख्युः प्रियस्य विप्ररिषेर अंग संगाति निर्वृतः प्रीतो व्यमुंचत अबिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण पुष्कर इक्षण। जिनके आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है भगवान कृष्ण के। प्रीतो व्यमुंचत अबिंदून, प्रेम में विह्वल होकर भगवान बाष्प, उनके आंखें बाष्प वर्षा करने लगे सुदामा के ऊपर। ऐसे उनको अपने दोनों बाहुओं से आलिंगन दिया भगवान ने ऐसे। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, अनेक मिनिस्टर लोग आजू बाजू में खड़े हैं, रानियां हैं अंतपुर के, अनेक स्त्री हैं, सब लोग देख रहे हैं। सबके सामने भगवान इस तरह बाग कर आलिंगन किया सुदामा ब्राह्मण को। अभी आगे आएगा वर्णन सुदामा का, कैसे वो फटे कपड़े पहने थे, उनके हड्डी दिख रहे थे, देखने में इतने गरीब दिख रहे थे वो। इतने बड़े कृष्ण इतने महान राजा कैसे सबके सामने ऐसे उनको आलिंगन दिया, किसी को भी आश्चर्य हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे धनी खानदान में जन्मे लोग जो होते हैं उनके उनके बीच में स्टेटस होता है, प्रेस्टीज होता है। कभी कभी जब उनका शादी होता है एक एक इन्विटेशन छापने के लिए 5,000 रुपया खर्चा करते हैं वो, आपने देखा होगा ऐसे। कभी कभी ऐसे बड़े होटल में शादी मनाते हैं, उसमें जो लोग आते हैं सब कोट सूट बूट सब पहने हैं, टाई पहने हैं सब, तो उनके स्तर के ही लोगों को बुलाते हैं। कभी अगर मीटिंग भी बुलाना होता है, आप ऐसा नहीं कि 4 करोड़पति को बुलाओ और 10 लाखपतियों को बुलाओ और 10,000 वालों को बुलाओ, ऐसे उनको अच्छा नहीं लगेगा उनको, क्योंकि उनके कम्युनिटी में एक स्तर का ही लोग साथ में आते हैं। मालूम है आपको इसका क्या बोलते हैं? प्रेस्टीज बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, उनका स्टेटस होता है। तो बड़े स्टेटस के लोग अगर उनके रिश्तेदार भी हो कोई जो निम्न स्टेटस के हैं उनके साथ संबंध रखना नहीं चाहते, सोचते हैं कि देखो उसका वो तो डेवलप ही नहीं हुआ अपने जीवन में, मैं इतना अमेरिका गया, लंदन गया, जर्मनी गया, करोड़ों रुपया कमा कर आया हूँ, तो उनके साथ संबंध ही नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं उनको। कभी कभी शादी में भी देखते हैं दूर से भी मुड़ लेते हैं, देखते भी नहीं है ऐसे। लेकिन आप देखेंगे इस दुनिया में लोग संबंध अगर कोई रखता है तो हृदय का संबंध ही होना चाहिए उसका। जब मैं कॉलेज में प्रचार करता था, ये भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का एक बड़ा आर्च है आपने देखा होगा, तो हमारे कार मुझे उधर आर्च के बाहर ही छोड़ देता था, तो अंदर हम पैदल चलते थे क्योंकि उधर कॉलेज जैसे हैं बहुत, हम अंदर चलते तो कोई कॉलेज स्टूडेंट मिलेगा हमारे कार्यक्रम में जुड़ेगा ना, इसलिए मैं ऐसे ही चलता था ऐसे। तो चलते समय देखा 4-5 विद्यार्थी जा रहे थे, तो एक विद्यार्थी था मेरे कार्यक्रम में पहले आया था, वो शायद 1-2 माला करता था वो, तो मैंने उसको देखा, उसको मुड़कर उसने मुझे भी देखा, हरे कृष्णा प्रभु जी ऐसे हाथ ऊपर किया उसने, तो मुझे उधर से निकट आना था मेरे पास, लेकिन उसको थोड़ा संकोच हुआ क्योंकि उसके मित्र थे आसपास में, तो उसने सोचा कि मेरे मित्र क्या बोलेंगे, वो तो हमको मजाक उड़ाएंगे कि ये साधु के साथ बातचीत करता है बहुत, तो मैं भी समझ गया कि थोड़ा संकोच करता है वो निकट आने के लिए। मैंने बोला ठीक है यू गो विथ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे मित्रों के साथ जाओ, टाटा बोल दिया उसको, चला जाओ ऐसे। तो दूसरा था वो 3-4 बाइक आ रहा था, वो भी आ रहा था उसमें एक था लड़का, तो मुझे देखते ही तुरंत मेरे पास आ गया, प्रभु जी पीछे बैठे मैं आपको लेके जाता हूँ कार्यक्रम के लिए। तो उसके मित्र सब पूछ रहे थे कौन है, कोई साफरान पाना कौन नहीं है, बोलता ये तो हमारे प्रभु जी हैं, हम कार्यक्रम अटेंड करते हैं, वो 16 माला करने वाला था। तो खुशी से पीछे बिठा कर उसके फ्रेंड चला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं उसको परवाह नहीं, क्योंकि उसका संबंध थोड़ा घनिष्ठ हो गया, तो वो लेके जा रहा है कार्यक्रम में। तो पहले वाला क्या था, उसका संबंध उतना अभी तो 1-2 माला करता है, वो अपने आप को पहचानता है ज्यादा किसके साथ, अपने मित्रों के सर्कल के साथ पहचानता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे मन में भी हम जितना कृष्ण के निकट आते हैं, अन्योन्यता बोलते हैं ना उसको, उतना हमारे अंदर संकोच भी चला जाता है। कभी कभी कुछ लोग ये तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कंठी माला को दिखाने के लिए डरते हैं, वो 1 माला पहनते हैं अंदर ऐसे, अगर किसी को कॉलर ऐसे बटन डाल देते हैं, कोई देखना नहीं चाहिए, किसी को पता ना चले कि हम भक्त हैं ऐसे, क्योंकि पता चलते हरे कृष्ण बोलेंगे हमको, हरे कृष्ण भक्त हैं। तो हम जितना हम भक्ति में तीव्र बनते हैं, हमें कुछ डर नहीं है भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए। इस तरह भगवान कृष्ण को भी कुछ प्रेस्टीज स्टेटस का प्रॉब्लम ही नहीं है जब उनके भक्तों की बात आता है। वो ऐसे हाथ खुले हाथ के साथ जाकर गले मिलाया सुदामा को ऐसे, ये जरा इसको तुलना कीजिए द्रुपद और द्रोण के साथ। जब द्रुपद ऐसे ही बड़ा राजा बन गया था, तभी द्रोणाचार्य उसके गुरुकुल का मित्र था, जब आ पहुंचा तो द्रुपद को बहुत प्रेस्टीज प्रॉब्लम हुआ, ये मेरे दरबार के लोग सब क्या सोचेंगे, ये ब्राह्मण फटा हुआ कपड़ा पहनकर आकर हमारा, मुझे शर्म आ रहा है मुझे। उसको बोला कि ए उसको बाजू में करो, पूछो क्या है, थोड़ा 2-4 पैसा देकर भेज दो उसको, मेरे पास मत लेके आओ उसको, क्या सोचेंगे वो। तो द्रोण आकर बोला उसको, हे द्रुपद याद है तुमको, हम गुरुकुल में साथ में हमने पढ़ाई की थी। वो क्या बोला द्रुपद ने, मैत्री होता है सम लोगों के बीच में, हम अभी सम नहीं है, मैं बड़ा राजा हूं, तुम एक निम्न ब्राह्मण हो, तुच्छ ब्राह्मण हो। इस तरह पुराने मैत्री को वापस पुनः स्मृति मत दो, उसका भूल जाओ उसको, ऐसे बोला उसने। देखिए ये द्रुपद राजा का प्रसिद्ध प्रॉब्लम हुआ, कृष्ण का प्रसिद्ध प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, देख सकते हैं इसे। इस तरह भगवान उनको स्वागत करते हैं अपने सभा में, सबके सामने ऐसे। तो आगे के श्लोक में आता है कृष्ण ने उनको कैसे मनाया सुदामा को। अतोपवेश पर्यंके स्वयं सक्युः समर्हणम्। हाँ, भगवान खुद उनकी अर्हणम आराधना करते हैं। उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावने जनीहि अग्रही चिरसाराजन् भगवान लोकपावनः वेलिंपद दिव्य गंधेन चंदनागुर कुंकुमैः धूपैः सुरभिर्मित्रम् प्रदीपावलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलम् गां च स्वागतमब्रवीत्। देखिए भगवान क्या करते हैं, उनको एक अपने ही बिस्तर में उनको बिठा कर उनको उनके उनके पांव को धोकर वो पानी को चरणामृत को अपने सर के ऊपर लेते हैं और उनको आरती उतारते हैं धूप के साथ दीप के साथ और चंदन का लेप करते हैं उनके माथे के ऊपर और इस तरह उनको एक गाय दान में देते हैं और इस तरह बहुत प्रेम के साथ उन्होंने उनकी स्वागत किया सुदामा को। ऐसे इस तरह वर्णन है। यू कैन शो दैट पिक्चर,
यू हैव दैट।
द प्रीवियस वन, हाँ दैट वन, या करेक्ट। हाँ देखिए सुदामा ब्राह्मण है, वो उसके पास पोहे भी है उसके उसके कंधे के ऊपर। अभी कृष्ण उतर कर आ रहे हैं, उसकी आलिंगन दे रहे हैं और उनको लेके जाकर अपने आसन में बिठा कर उनकी अगले स्लाइड का इस तरह उनकी विविध ऐसे उनकी पूजा करते हैं। इसको रुक्मिणी देख रही है, रुक्मिणी ने सुना है पहले भी सुदामा के बारे में भगवान से। वो क्या करती है, कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजने नवै। इधर बताया गया है कुचैलम मलिनम क्षामम, ये जो ब्राह्मण था क्षामम का मतलब है जो एकदम पतला था, उसका हड्डी दिख रहे थे, मलिन कपड़ा गंदा कपड़ा पहना था, फटा हुआ कपड़ा था, लेकिन ऐसे द्विज ऐसे ब्राह्मण को देवी रुक्मिणी देवी खुद ही अपने हाथ में चामर लेकर उनकी सेवा की, वो भी चामर सेवा किया रुक्मिणी ने, ऐसे बताया दिया। देखिए रुक्मिणी वो लक्ष्मी है, ऐसे लक्ष्मी के बारे में एक वर्णन आता है तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में। तो भगवत धाम में अनेक लक्ष्मियां भगवान विष्णु की सेवा करना चाहती हैं। ऐसे भगवान के धाम की वर्णन है कि जो महल जब महल सब बनाए गए हैं मार्बल से बनाए गए हैं, उसमें सोना और चांदी और रत्नों का से बनाया हुआ विविध आभूषण है उधर, और उधर धूल ही नहीं है दुलाने के लिए, क्योंकि आप जमीन को देखो जैसे आईने को देखने के बराबर है जमीन को देखना, इतना साफ सफाई किया हुआ है उधर। लेकिन फिर भी वो अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर झाड़ू मारती है लक्ष्मियां उधर, एक हाथ में वो लीलाम्बुजे न हरिषद बनी मुक्त दोष, एक हाथ में क्या पकड़ी है कमल पकड़ी है और कपड़े पहनी है एकदम महंगे कपड़े, और उनके उनके रूप के वर्णन भी किया गया है, कितने सुंदर हैं, और आभूषण पहनी है, लेकिन दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़ कर क्या करती है, वो सफाई करती है। क्यों करती है? विष्णु को संतुष्ट करने के लिए और उनके प्रेम पात्र बनने के लिए। ऐसे इस तरह इधर भी रुक्मिणी क्या कर रही है, ये ब्राह्मण की सेवा कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं भी इस ब्राह्मण की सेवा करूंगी तो भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान की संतुष्टि के लिए उसने किया। इस तरह बताया जा रहा है, इधर भगवान के भक्त सुदामा उनको भगवान ही सेवा करते हैं और भगवान की धर्मपत्नी लक्ष्मी भी सेवा करती है उनकी, इस तरह बताया जा रहा है। देखिए भागवत में ये मर्म, भक्ति का मर्म बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। भगवान कृष्ण जो हैं उनके एक श्लोक में बताया गया कि भगवान कृष्ण के पदकमलों की रज अगर किसी के सर के ऊपर आ जाए तो ऐसे भक्त के हृदय में भक्ति भावना जागृत होता है, कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है। इसका मतलब क्या है? भगवान के आदतों को हमें समझना चाहिए। एक आदत है भगवान का, जैसे मैंने बोला आपको पहले प्रवचन में, अगर कोई शरण लेता है भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं है, वो एक आदत बोला मैंने, है ना। इस तरह भगवान के कोई भक्त का सेवा करता है, असिस्टेंस करता है, जैसे हम लोग प्रभुपाद को प्रचार में मदद करते हैं, तो ऐसे भक्तों के भक्त भी भगवान के बहुत निकट प्रिय पार्षद हो जाते हैं। भक्तैर भक्त जना प्रिय ऐसे बताते हैं। तो इस तरह भगवान भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान को पर बोला गया है लेकिन उनको सुलभ भी बोला गया है। पर का मतलब है वो पहुंच नहीं पाएंगे हम भगवान के पास, लेकिन सुलभ का मतलब है आसानी से मिल जाते हैं भगवान। जैसे श्रीपद रामानुजाचार्य एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक बड़ा हाथी है, आप ऊपर चढ़ पाएंगे अपने आप? उदाहरण के लिए अगर हाथी का इतना आकार, बड़ा आकार है ये सीलिंग तक, नीचे से आप चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हाथी ऐसे अपने घुटनियों को ऐसा करके बैठता है नीचे और आपको अपने सूंड से पकड़कर ऊपर बिठाता है तो आप बैठ पाओगे, है कि नहीं। इस तरह भगवान को भी प्राप्त करना कठिन है, लेकिन भगवान ही कभी अपने भक्तों को अपने ऊपर कर देते हैं, अपने भी बड़ा बना देते हैं। जैसे हनुमान ने समुद्र को पार करके लंका गए, है ना हनुमान। तो प्रभुपाद जी ने पूछा एक बार, अरे हनुमान समुद्र पार करके गए सेतु बंध के बिना, लेकिन रामचंद्र जी को सेतु बंध बनाना पड़ा, दोनों में कौन बड़े हैं? हनुमान बड़े हैं ना, आपने सुना है, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम, हरी से बड़ा हरी का नाम। तो भगवान का नाम लेकर वो पार गए, लेकिन भगवान को सेतु बंद बनना पड़ा, है कि नहीं। ये क्यों करते हैं भगवान? देखिए ये बात है भगवान के संबंध में, अपने भक्तों को अपने से भी बड़ा बनाना चाहते हैं भगवान। जैसे अब भारत में देखा जाता है कि कोई माता पिता गांव में रहते हैं, लेकिन पिताजी बोलते हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा है, हमने उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हम अंगूठा छाप लेकिन हमारा बेटा बड़ा इंजीनियर है। आप सोचेंगे अरे अपने बेटे के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर कैसे बताते हैं, उनको कुछ उसमें अपमान नहीं होता है अपने बेटों के बारे में बड़ा बोलने के लिए, समझे ना आपने, माता पिता को। इस तरह भगवान को भी भगवान ही शक्ति देते हैं भक्तों को ऐसे चमत्कार वगैरह करने के लिए, हनुमान ने जो की थे ऐसे, लेकिन उसमें आनंद लेते हैं। इस तरह कृष्ण भी अपने ही भक्त की पूजा कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे अपने भक्तों की स्मरण करना, भक्तों की पूजा करना उनका आदत है। एक बार कोई जाकर हनुमान को बोला कि हनुमान अफसोस की बात है कि रामचंद्र जी के पास एक डायरी है उसमें आपका नाम नहीं है, अनेक नाम है, सैकड़ों नाम है। तो हनुमान रो पड़े, तुरंत भाग गए रामचंद्र के पास, बोले कि आपकी डायरी में मेरा नाम नहीं है, अनेक भक्तों का नाम है, आप बोलिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे नाम को एंट्री करने के लिए उधर। तो रामचंद्र जी हंस पड़े, तो अंदर से और एक डायरी निकाला उन्होंने, ये डायरी देखा है तुम? तो हनुमान ने पूछा कितने डायरी आपके पास ऐसे है? भगवान ने बोला ये हमारे हृदय में रखा हमने, एक स्पेशल डायरी है। तो उसको खोल कर देखा, उधर हनुमान का नाम था पहला नाम। तो रामचंद्र जी बोले देखो ये डायरी में नाम है मेरे अनेक भक्त लोग जो मेरा सदा स्मरण करते हैं, और ये डायरी में मेरा वो नाम है जिनको मैं स्मरण करता हूँ, ऐसे बोले। तो इस तरह जिस तरह भगवान का भक्त भगवान को स्मरण करता है, इसे भक्त भी भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे देखिए, भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आप उनके भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान उसमें और ज्यादा आनंद लेते हैं। जैसे हनुमान जी, आपको मालूम है हनुमान जी, ये रामचंद्र जी ने उनको एक मिशन दी। क्या मिशन दी थी उनको? सीता को ढूंढ निकाल कर लाओ, है कि नहीं? तो उसमें कितना समस्या अपनाना पड़ा हनुमान को। वो लंका पार करते समय 3 अलग अलग राक्षसियां आई थी, बीच में लंकिणी को पार करना पड़ा, उसके बाद अंदर जाने के बाद राक्षसियों के साथ लड़ाई किया, और सभा में रावण के सभा में अपमानित किया रावण ने, और उनके पूंछ में आग लगाया गया, है कि नहीं? लेकिन सीता को मिलने के बाद सीता के हाथ में उन्होंने वो अंगूठी दी थी जो रामचंद्र जी दिया, तो सीता ने एक चूड़ामणि देकर वापस दिया उनको, बोला कि हनुमान रामचंद्र जी के पास इस चूड़ामणि को दे देना, दिखाओ तुरंत उनको मेरा स्मरण आ जाएगा। तो उस चूड़ामणि को लेकर वापस लौटे हनुमान। वापस लौटने के बाद रामचंद्र जी इतने प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने हनुमान को आलिंगन दिया। भगवान ने बोला कि जंगल में मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ उनको आलिंगन देता हूँ। तो आलिंगन दिया। आपने एक पिक्चर देखा होगा रामचंद्र जी हनुमान को आलिंगन करते हुए ऐसे। तो एक आचार्य बताते हैं, जब वो रामदूत बनकर लंका गए, उनके पूंछ में आग लगाया गया हनुमान को, लेकिन सीता दूत बनकर राम के पास गए, उनको रामचंद्र जी का आलिंगन मिला। तो इसलिए हमें किसका दूत बनना चाहिए? तो सीता का दूत बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर कृष्ण की भक्ति चाहिए तो हमें राधा जी की आशीर्वाद चाहिए। हमें महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इस श्लोक में बताया गया कि महात्मा लोग हमेशा एक देवी का आश्रय लेते हैं। तो इस दुनिया में 2 तरह की देवी हैं। एक देवी है राधा जी, दूसरी देवी है दुर्गा देवी, उसका भी नाम देवी है वो, और एक श्लोक में आता है वो देवी का नाम, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। वो बताते हैं ये खतरनाक देवी है, जिसके पास त्रिशूल है, वो कभी कभी उसके जिह्वा भी बाहर है ऐसे, हैं? आपने देखा है, तांडव करती है, असुरों को मारती है ऐसे। दैवी एषा गुणमयी, वो त्रिविध तापों से सताती है सब जीवों को। अगर उस देवी से बचना है तुमको, क्या करो? मामेवे, मेरा ही शरण लो। और कोई पूछेगा, कृष्ण आपका शरण लेना है, आपका शरण कैसे लेना है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमान। बोलते हैं कि मेरा शरण लेना है तो तुम राधा जी से प्रार्थना करो। प्रभु जी बोलते हैं, राधा जी के हाथ में एक फूल दो और बोलो कि आप कृष्ण को अर्पण करो, क्योंकि अगर आप अर्पण करोगी तो कृष्ण जरूर स्वीकारेंगे। लेकिन हम लोग राधा जी तक पहुंचने के लिए भी हमारे अंदर क्षमता नहीं है, राधा जी के साथ कैसे बात करना है हमें मालूम नहीं है। इसलिए राधा जी से आने वाली कृपा गुरु परंपरा के आचार्य के द्वारा आता है। आप आल्टर में देखते हैं ना, जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, गौरकृष्ण बाबा जी हैं, भक्सन सत ठाकुर हैं, प्रभुपाद हैं और हमारे गुरु हैं ऐसे। तो राधा जी की कृपा उन गुरुओं के द्वारा आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, भक्ति हमारे गुरु को देते हैं, गुरु प्रभुपाद जी को देते हैं, प्रभुपाद जी उनके गुरु को देते हैं, अंत में वो लोग राधा जी को देते हैं और राधा जी कृष्ण को देती है। जब राधा जी रिकमेंड करती है आपका नाम, कृष्ण मना नहीं कर पाएंगे, वो पावरफुल रिकमेंडेशन है। जैसे अगर किसी की धर्म पत्नी बोलती है इनको डोनेशन दे दो, तो पति तुरंत दे देता है, वो फाड़ कर दे देता है। अगर पति को पूछो, पत्नी पूछे कि क्यों देने का, वो देता नहीं है, वो रख देता, अंदर रख देता। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं आया अभी तक, ऐसे बोलता। क्योंकि भगवान के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? लक्ष्मी जी है ना, भगवान की लक्ष्मी। तो इसलिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। तो भगवान के भक्तों का आश्रय जो लेते हैं, उनसे भगवान और भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सीधा हम भगवान को पहुंच नहीं पाएंगे, हम मालूम भी नहीं हमें भगवान को कैसे प्राप्त करने का। इसलिए इधर हम देख रहे हैं भगवान भी सेवा कर रहे हैं, और भगवान के महान भक्त जो रुक्मिणी जी हैं, वो भी सेवा कर रही है इनकी ऐसे। तो इसको देखकर अनेक मिनिस्टर लोग आ गए और सभा के अनेक स्त्रियां जो अंतपुर में रहने वाली, वो एक दूसरे को देख रही थी, देखो भगवान भी सेवा कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी भी सेवा कर रही है। अंतपुर जनो दृष्ट्वा कृष्णे नामल कीर्तिना विस्मितो भूत ति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम। देखिए अंतपुर जनो दृष्ट्वा, यशोदा पिक्चर, यशोदा अंतपुर जनो मतलब अंतपुर में रहने वाली बाकी स्त्रियां वो खंभ के पीछे खड़े होकर वो देख रही है। कृष्णेन अमल कीर्तिना, कृष्ण भगवान जो है जिन जिनका नाम है अमल कीर्तन, जिनका नाम यश सारे ब्रह्मांड में गाया जाता है, शुद्ध कीर्ति है। तो ऐसे अनदर पिक्चर शो द प्रीवियस वन, हाँ वो भी देखिए, वो लोग आपस में बातचीत कर रही है। वो विस्मित हो बूद, वो विस्मित हो गई, वो आश्चर्यचकित हो गई वो उसको देखकर। अति प्रीत्या अवधूतम सभाजितम, ये भगवान अपने अति प्रीति है उनके हृदय में, इसके कारण इस अवधूत ब्राह्मण की वो इस तरह पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपस में बातचीत कर रही है वो। देखिए शब्द अवधूत का मतलब क्या है, जो व्यक्ति बाहरी चीजों को भूल जाता है, जैसे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में अगर कोई ब्रह्मचारी गंदा कपड़ा पहना है, फटा हुआ कपड़ा पहना, तो हम बोलते हैं अवधूत बोलते हैं, अवधूत जैसा है। कभी किसी का कुर्ता फटा हुआ है, वो नाच रहा है, पता नहीं इसको फटा है इधर है, ऐसे कभी पूरा फटा है इसे है, तो उसको अवधूत बोलते हैं। अवधूत का मतलब है वो बाहरी क्या कपड़ा पहना हो, वो गंदा है क्या, साफ है क्या, फटा है क्या, ठीक है क्या, वो देखता नहीं है, वो कुछ किसी और चीज के बारे में सोच रहा है वो, उसको अवधूत बोलते हैं। तो हम प्रभुपाद बोलते थे फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस बोलते थे, पहले अच्छा कपड़ा पहनो उसके बाद प्रचार करो ऐसे, तो क्योंकि हम प्रचार के ऐसा मिशन है। लेकिन कुछ साधु महात्मा हैं वो इतने पहुंचे हुए आत्मा हैं, वो बाहर के कपड़े को भी देखते नहीं है, वो कितना गंदा पहने हैं, कितना फटा पहने हैं, क्योंकि इतने वो कृष्ण में रमण करते हैं, अपने अपने ही दुनिया में है, आनंद में है, भगवान के स्मरण में रमण में है, इसके कारण वो बाहरी चीजों को खाना पीना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं, ऐसे उनको भी अवधूत बोला जाता है उनको भी है? जैसे सातवें स्कंद के अवधूत ब्राह्मण, ग्यारहवें अध्याय के अवधूत ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं ऐसे है? तो इस तरह इनके बारे में भी ये बोलती है कि ये अवधूत जो है ये ब्राह्मण, इनको इतना अच्छी तरह पूजा किया जा रहा है। आगे बताते हैं किम मनेन कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हितेनाधमेन च योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संवृतः पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तो ग्रजो यथा। ये बोलते हैं किम मनेन कृतम पुण्यम, क्या पुण्य क्या है ब्राह्मण ने कि अवधूत है ना भिक्षुणा, ये तो भिक्षुक है और अवधूत है, श्रियाहीन, इसके पास कुछ पैसा धन दौलत कुछ नहीं है, गंदा कपड़ा पहना है, फटा कपड़ा पहना है, ऐसे ब्राह्मण को इतना इसने इस तरह यो असो त्रिलोक गुरुणा, तीनों लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण, जिनका और एक नाम है श्रीनिकेतन, जो श्री लक्ष्मी जी उनके छाती में निवास करती है, ऐसे भगवान कृष्ण पर्यंकस्ताम श्रीयम हित्वा, अपने ही आसन को छोड़कर भगवान आपने दोनों बड़े लंबे बाहुओं से उसको आलिंगन दिया है और उसकी पूजा किया है। जरूर ये ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि परिश्वत तो अग्रजो यथा, अपने ही बड़े भाई बलराम जी को जिस तरह भगवान आलिंगन देते हैं, इस तरह उन्होंने आलिंगन किया है किसको, सुदामा को, इसलिए ब्राह्मण ने बहुत पुण्य किया होगा। देखिए क्या पुण्य है, ये भौतिक पुण्य नहीं है, भौतिक पुण्य मिट ही जाता है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर आओ भौतिक पुण्य मिट जाता है, नरक में जाकर आओ पाप कर्म मिट जाता है, लेकिन ये पुण्य जो बात चल रहा है इधर, इसको बोलते हैं भक्ति उन्मुख स्वीकृति। जो हमें प्राप्त होता है जब हम भगवान के भक्त भगवान इनके संबंध में आकर हम करते हैं, तभी ये पुण्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति था, वो हर साल वो 10,000 लोगों को वो अन्नदान करता था वो, तो ये पुणे में करता था अन्नदान, लेकिन उसके भाई किसी तो गांव में था, वो भी 1,000 लोगों को खिलाता था, लेकिन वो बकरों को काट कर खिलाता था वो। तो हमने जब मिला इसको बोला कि देखो तुम्हारे भाई को बोलो ये बकरा काट कर इस तरह खिलाना बड़ा पाप है, तो उसको भाई को बोला। उसके बाद उसको भाई को पता चला, क्योंकि अनेक लोग दान धर्म करते हैं उनको पता नहीं दान कैसे देना चाहिए। तमोगुणी दान का मतलब क्या है, कोई शराब पीता है और उस मित्र को बोला कर बोलता तुम भी पियो मेरे साथ, वो शराब का दान देता है, वो तमोगुणी दान माना जाता है वो। इस तरह बकरों को काट कर खिलाना भी तमोगुणी दान है वो। तो ये व्यक्ति जो है, इसको किसी भक्त ने बोला कि देखो तुम अन्नदान कर रहे हो, लेकिन इसका अन्नदान में बड़ा गर्व था इसको, हम अन्नदान कर रहे हैं, सब लोग हम अन्नदाता हैं, सब लोगों को दे रहे हैं ऐसे। लेकिन उसने बोला कि इसके बदले तुम प्रसाद का दान दो लोगों को। तो उसने पूछा क्या फर्क है, प्रसाद भी अन्न है ये भी अन्न है। बोला नहीं, प्रसाद जब तुम देते हो तुम्हारे चित्त शुद्ध होगा। तो उसने भी भगवान को भोग अर्पण किया, भक्तों ने सिखाया उसको कैसे भोग चढ़ाने का। उसको लोगों ने बोला कि अभी तो भोग चढ़ाते हो लेकिन तुम माला भी करो, तो माला भी किया शुरू किया उसने, माला भी किया भोग भी चढ़ाया, और इस तरह अन्नदान के बदले उसने प्रसाद दान दिया। तो धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार चला गया कि मैं अन्नदाता हूँ। अन्नदाता कौन है, अहम बीजा प्रदाय पिता, सबको अन्न देने वाले भगवान कृष्ण ही है, समझ में आ गया उसको। तो धीरे धीरे अहंकार छूट गया, ममता छूट गया, समझ गया कि भगवान ही मालिक है, भगवान का प्रसाद दिलाने से इस तरह धीरे 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 वो माला करके वो भगवान के भक्त बन गया वो। समझा ना आपने, पहले वो कर रहा था भौतिक पुण्य काम, अभी वो कर रहा है हाँ भक्ति उन्मुख का सुकृति। आपको दोनों के बीच में फर्क समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि अगर आप लोगों को अन्नदान दोगे आज अन्न खाते हैं कल विष्टा हो जाता है वो बस, लेकिन अगर आप प्रसाद खिलाते हैं तो प्रसाद क्या होता है, एक पोर्शन तो विष्टा मलमूत्र के रूप में चला जाता है, लेकिन उसमें जो भगवान का प्रेम है भक्ति है वो उनके आत्मा के साथ जाकर आत्मा को जगाता है, उनके अंदर भक्ति भावना को जागृत करता है इसे। तो एक बार मायापुर में हमारे इस्कान के ऊपर कुछ कोर्ट केस चल रहा था मायापुर में, तो हमारे भक्त लोग कोर्ट में जाते थे, 8 साल चल रहा था वो कोर्ट केस, रेगुलर जाना पड़ा इनको कोर्ट में। लेकिन जो व्यक्ति केस किया था एक जमीन के संबंध में, उसको हमारे भक्त लोग कुकीज केक वगैरह खिलाते थे उसको, हालांकि वो दुश्मन का पार्टी था फिर भी वो खिलाते थे ऐसे। तो 8 साल हो गया, अंत में वो जीत गया, इस्कान हार गया। तो लेकिन अभी तो कोर्ट में आया नहीं वो, लेकिन वो इस्कान मंदिर आना शुरू हो गया उसका, क्योंकि प्रसाद का आता रहा है ना। तो 2 साल के बाद आया वो इस्कान, भक्त बोला कि अभी मैं जमीन दान में देना चाहता हूँ, ऐसे बोला उसने। भक्त लोग बोले अरे 8 साल पहले बोलते तो लॉयर का फी बच जाता था हमको, ऐसे बोले। वो बोले तभी तो मैं भक्ता नहीं था प्रभु जी, ऐसे बोला। तो उसको दान में देने की मन कैसे हुआ उसको, पुण्य है ये भक्ति उन्मुख सुकृति है। इस तरह उसका भक्त लोग देखे कितने निर्मल होते हैं, दुश्मन को भी खिलाते हैं वो प्रसाद खिलाते, उन्होंने देखा नहीं कि ये दुश्मन है। जैसे जर्मनी में ऐसे कुछ कोर्ट केस चल रहा था भक्त हमारे इस्कान के ऊपर, तो भक्त लोग कोर्ट में जाकर छोटे छोटे इस्कान के बच्चे थे सबको कुकीज खिलाते थे कोर्ट में, और इतना इस्कान के प्रभुपाद की किताब पढ़ाया गया उधर कोर्ट में, तो हमारे इस्कान जीत गया उसमें। तो इस तरह पुण्य बढ़ता है लोगों के अंदर, भक्ति सुकृति पुण्य बढ़ता है इस तरह भगवान के संपर्क में आने से। एक बार प्रभुपाद जी एरोप्लेन में जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं खाते थे एरोप्लेन में बाहर, लोग पूछते थे आपको क्या चाहिए वेज या नॉन वेज, कुछ नहीं बोलते थे प्रभुपाद जी। तो उनके प्रभुपाद के शिष्य ने उनके प्लेट में ये पफ्ड राइस, क्या बोलते हैं पफ्ड राइस को, कुरमुरा, कुरमुरा बोलते हैं ना, कुरमुरा डाला उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ऐसे खा रहे थे, तो कोई एयर होस्टेस जो जा रही थी उसने देखा कुरमुरा को, तुरंत उनको लगे खाना चाहिए, तो अपने हाथ से एक मुट्ठी ले लिया उन्होंने उधर से, भक्त लोगों ने देखा, हे महेंद्र भोपाल की प्लेट से ले रही है ऐसे, हम भी महा महाप्रसाद लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं लेते हैं ऐसा ऐसा उन्होंने तो अपने मुंह में डाला, खक 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 बोला वो बहुत अच्छा प्रसाद। तो ऐसे गई और वापस लौट कर आ गई और पूछा, स्वामी जी आपके लिए क्या सेवा करूं, कुछ बोलिए, कुछ मांगे, ऐसे बोला। हाँ, प्रभुपाद ने बोला कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो बोले कि आपको चाहे तो मैं आई विल ब्रिंग यू सम पपाया फ्रूट एंड हॉट मिल्क, आपको लाऊं। प्रभु ने बोला ठीक है लाओ बोला। तो अंदर जाकर पपाया कट करके और दूध भी लाकर प्रभुपाद जी को दिया। तो वो भक्त बोलते हैं कि देखो, एक शुद्ध भक्त के महा महा कहने के तुरंत बाद सेवा में रुचि आ गया उसको। हाँ, क्योंकि इतना पुण्य शक्तिशाली है, तुरंत सेवा करने की इच्छा हुआ उसको, कुछ तो करना चाहिए सेवा गुरु जी को ऐसे। तो इस तरह से पुण्य जब हम करते हैं तभी हम कृष्ण के निकट आते हैं। इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं इधर, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा, क्या पुण्य किया है इस भिक्षुक ने कि इसको इतना आदर दिया जा रहा है, इतना प्रेम प्रकट किया जा रहा है। भगवान कृष्ण दो ही लोगों को आलिंगन देते हैं, एक है बलराम जी, दूसरा है रुक्मिणी। हमने देखा नहीं है किसी और को आलिंगन करते हुए, ये तीसरा व्यक्ति है अभी जिसको भगवान आलिंगन दे रहे हैं। इसका मतलब है ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ब्राह्मण चाहे तो भगवान के एकदम निकट पार्षद है, महान भक्त है, इस तरह वो सोच रही है सब। तो हम लोग भी हमारे पुण्य को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे नाम जप के द्वारा रोज पुण्य बढ़ता है, भक्ति सुकृति। श्रीमदाम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। देखिए इस श्लोक में बोला गया है कि पुण्य श्रवण के, श्रवण से आपका पुण्य बढ़ता है। इसका मतलब अभी आज आपने कथा सुना और आपका पुण्य थोड़ा बढ़ गया अभी पहले से। इसे कथा श्रवण से पुण्य बढ़ता है, नाम जप से पुण्य बढ़ता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करने से पुण्य बढ़ता है, भगवान की प्रदक्षिणा करने से पुण्य बढ़ता है, इस तरह के कार्यों को करने से पुण्य बढ़ता जाता है। ऐसे तो मैं भक्त पुरुषोत्तम महाराज की एक किताब है, दामोदर नाम का एक किताब है, उस किताब में कार्तिक महात्म्य के बारे में मैं पढ़ रहा था। तो एक पुराण में ऐसे एक कथा आता है कि एक पिताजी थे, उसने अपने बेटे को बोला कि हे बेटा, वो ब्राह्मण था वो पिताजी, उन बेटे को बोला कि बेटा देखो मैं धर्म करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, तुम भी पूजा पाठ कुछ तो करो। तो उसके बेटे ने बोला कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, छोड़ दो मुझे, हमको इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कुछ रुचि नहीं है। एक दिन पिताजी, वो बड़े तपस्वी थे, तपोबल वाले थे, उन्होंने देखा कि बेटा इस तरह कर रहा है, तो उन्होंने डांट दिया उनको कि देखो मूर्ख, तुम इस तरह धर्मपरायण नहीं होंगे तो तुम चूहे बनोगे, ऐसे बोला उन्होंने। तो अगले क्षण वो चूहा बन गया वो, अगले क्षण तो वो चूहा रोने लगा। तो अपने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया, बोला कि इसे विमोचन कैसे प्राप्त किया जाए, आप बताइए। तो पिताजी बोले देखो, कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक व्रत होता है, उसमें भगवान विष्णु की महिमा को जब तुम सुनोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा उस समय, ऐसे बोलकर तो वो चूहा उधर से भाग गया, किसी पेड़ के छिद्र के अंदर जाकर वो रहता था वो। तो एक बार विश्वामित्र मुनि अपने शिष्यों के साथ एक नदी में नहा धोकर आकर उस पेड़ के नीचे बैठे, वो सब शिष्य बैठ गए और उन्होंने कथा शुरू की। तो कथा ऐसे बोलते बोलते अचानक देखा उधर एक शिकारी जंगल में घूम रहा था, वो भी आया उधर अपने हाथ में एक धनुष बाण वगैरह लेकर। तो उनको, उन्होंने पूछा विश्वामित्र, क्या चल रहा है इधर, आप लोग कौन है, ऐसे पूछा उन्होंने। तो वो बोले कि ये बहुत महत्वपूर्ण मास है कार्तिक मास, तुम भी बैठो सुनो। तो वो भी बैठा सुनने के लिए, अपने धनुष बाण सब नीचे रख दिया उसने। जब कथा श्रवण किया, वो शिकारी का भी हृदय पिघलने लगा भगवान विष्णु की लीलाओं को सुनकर, भगवान की महिमा को सुनकर। इतने में जब उनका क्लास पूरा हुआ, अचानक चूहा वो चित्र से बाहर निकला, तुरंत उसको एक देवता का शरीर प्राप्त हो गया उसको, और वो दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र को, बोला कि विश्वामित्र ने पूछा कि अरे तुम कौन हो, तो उसने ये कहानी बोला उसको, मेरे पिताजी थे उनके श्राप मिला था मुझे, अभी कार्तिक मास और विष्णु की महिमा आपने बोला इसको सुनकर हमें ये दिव्य शरीर प्राप्त, हमको भी मालूम नहीं आपके आशीर्वाद है, इस तरह बोलकर दंडवत प्रणाम करके उनको धन्यवाद देकर स्वर्गलोक की ओर गया वो ऐसे। तो ये शिकारी भी उस विस्मय घटना को देखकर वो भी भगवान के भक्त बना, वो भी ऐसे बताया गया। ऐसे आप देखेंगे कि भगवान की कथा के श्रवण और भक्तिमय क्रियाएं करने से एक व्यक्ति का भक्ति सुकृति बढ़ता है, इतना बढ़ता है। उसी किताब में मैंने और एक पुराण की कथा पढ़ा मैंने, एक उसी कार्तिक महीने में एक ब्राह्मण सुबह सुबह उठकर वो विष्णु मंदिर की ओर जा रहा था आराधना, विष्णु आराधना के लिए, हाथ में प्लेट था उसका, तुलसी के पंखुड़ियाँ, तुलसी पत्ते थे, फूल था, गंगा जल था, अगरबत्ती था, धूप था, दीप था, सब कुछ था, लेके जाकर जा रहा था भगवान विष्णु के नामों को उच्चारण करते, विष्णु सहस्र नाम जपते हुए ऐसे मंदिर की ओर जा रहा था वो। अचानक देखा दूसरी ओर से एक पिशाच जैसे चेहरे वाली कोई स्त्री आ रही है, देखने में जैसे पिशाच होते हैं ना, उसके दांत होते हैं, चेहरे देखने में बहुत डर होता है, उसको देखकर तो ब्राह्मण डर गया, क्योंकि अंधेरे में जा रहा है मंदिर की ओर, उसको देखकर इतना डर गया उसने अपने हाथ में जो प्लेट था उसको फेंक दिया उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जब फेंक गया पूरा पानी गिर गया, तुलसी का दल भी उसको छुया, तो अगले क्षण तुरंत वो पिशाच का रूप चला गया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वो स्त्री बोल रही थी ये क्या हो गया, आपने जो फेंक का पता नहीं उसमें क्या क्या था, लेकिन हमारा रूप ऐसे परिवर्तित हो गया, तो आप जरा सुनिए मेरी कथा। तो बोले कि मेरे पूर्व जन्म में मैं ऐसे एक पत्नी थी, घर में मैं कुछ भी कुकिंग नहीं करती थी, लेकिन पड़ोस के घरों में जाकर उनसे लूट लूट कर खाती थी। तो मेरा पति जो था वो बहुत तंग आ गया मेरे से, और इतना ही नहीं मैं पति को इतना डांटती थी जोर जोर से, इतना चिल्लाती थी, चीखती थी, डांटती थी। तो एक ऐसा समय हो गया पति वो आत्महत्या कर लिया, तो उसको देखकर तो मैंने भी आत्महत्या कर लिया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यमराज के दूतों ने आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस स्त्री को 3 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग घर में जाकर चोरी करके खाती थी, इससे उसको एक बंदर का शरीर मिलेगा उसको, और इस तरह चुपके से जाकर खाती है इसलिए एक बिल्ली का शरीर मिलेगा उसको, इस तरह से वो और एक शरीर था, एक वैम्पायर बर्ड बोलते हैं उसको, पता नहीं घूमने वाली एक पंछी है, वो शरीर मिलेगा उसके बाद इसको एक मानव शरीर मिलेगा उसको, ये 4 शरीर उसको प्राप्त करना था। तो वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो ये आत्मा को पता चल गया ना क्योंकि इसने आत्महत्या किया है इसलिए इसको पिशाच के शरीर में घूमना पड़ेगा कुछ 1000 साल ऐसे, तो ऐसे बोलकर चले गए। तो उसके बाद वो पिशाच के शरीर में घूम रही थी वो। तो एक बार एक बड़े बनिया जा रहा था नॉर्थ इंडिया में, तो उसके शरीर में घुस गई, तो होटल में कहता था ये भी गोस्ट पिशाच भी कहता था उसके द्वारा, क्योंकि पिशाच अपने आप कहा नहीं पाएंगे, किसी के शरीर में घुस कर वो कहते थे। लेकिन जब वो गया हरिद्वार में, हरिद्वार के अंदर जब गया तभी पिशाच अंदर जा नहीं पाया, हरिद्वार में उसको निकलना पड़ा शरीर से, निकलकर बहुत प्यास बहुत भूख के साथ इधर उधर घूम रही थी। तो बोले कि अभी मैं सुबह इसी मार्ग से मैं आ रही थी, लेकिन आपने जो फेंका मेरे ऊपर तुलसी का दल और गंगा का जल ये सब फेंका आपने, एक गीता था ना, भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लवा कणिका पीता सकृदापि येन मोरारि समर्चा क्रियते येन यमेन न चर्चा भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते। बताते हैं जो लोग रोज भगवद गीता का एक पृष्ठ कम से कम पढ़ लेते हैं, और जो गंगा जल को भगवान को अर्पण करते हैं, जो मुरारी चर्चा भगवान कृष्ण की चर्चा में आकर बैठे, जैसे आप लोग आए हो आज, इस तरह के चर्चा करते हैं, उनको मृत्यु के समय यम किंकरों के साथ वाद विवाद नहीं करना पड़ेगा। उनको वाद विवाद का मतलब क्या है, यमदूत बोल रहे आओ नरक में लेके जाएंगे तुमको, वेट करो वेट करो, मैंने पुण्य भी किया है, हिसाब दिखाओ कितना पाप किया है, ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। यम किंकर आएंगे ही नहीं, ये तीन चीज करेंगे तो ऐसे बताते हैं। तो ब्राह्मण ने देखा है स्त्री को, तो तभी ब्राह्मण ने बोला ओ ऐसा है क्या तुम्हारा हाल, तो बोले कि अभी ये इस तरह शरीर मुझे कैसे मिला मुझे पता नहीं, ऐसे बोल रही थी आपने जो फेंका मेरे ऊपर। तो बोले कि मैं मेरे पाप कर्म के कारण ये सब जानवरों के शरीर मुझे प्राप्त करना पड़ेगा, आप कुछ उपाय बताइए। तो ब्राह्मण ने बोला मेरे पीछे मंत्र दोहराया, दोहरा वो ऐसे बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ऐसे तीन बार बोला उन्होंने, उस स्त्री भी तीन बार बोली। और ब्राह्मण ने बोला कि हाँ, इसके पहले ब्राह्मण ने और एक काम किया, उसने बोला कि क्योंकि तुम पिशाच योनि में हो, तुमको ये मंत्र जपने के लिए भी तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए मेरे आधा पुण्य कर्म को तुमको दान में देता हूँ। इस तरह अपने कमंडल लेकर पान लेकर उसको अर्घ्य दिया और ये मंत्र तीन बार उच्चारण करवाया उसके द्वारा। जब तीन बार उच्चारण करवाया, तुरंत स्त्री को एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया उसको। तो वैकुंठवासी वैकुंठ लोक से वैकुंठ एरोप्लेन आ गया नीचे, तो आकर खड़ा हो गया। तो वैकुंठवासी उनका नाम भी बताया गया, अंदर से बाहर उतरे, वो बोले कि ये स्त्री जो है पूर्ण पवित्र हो गई है, अभी इसको अभी वैकुंठ हम लेके जाने वाले हैं, ऐसे बोले। तो स्त्री जो ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया, फूलों की वर्षा की और प्रदक्षिणा की, बोले कि आप ही मेरे गुरु हो, क्योंकि आपने मंत्र दिया है और आपने हमको उद्धार किया है, अपने पापों से ऊपर उठाया आपने, अभी हम वैकुंठवास के लिए जा रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि दंडवत, ऐसे बोलकर वो एरोप्लेन में चढ़ गई और एरोप्लेन ऊपर निकलने ही वाला था। लेकिन जो वैकुंठवासी जो आए थे, उन्होंने इस ब्राह्मण की ओर मुड़कर बोला कि हे ब्राह्मण, आपको आश्चर्य होगा कि हम इसको लेके जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ये बात समझो, आप बहुत सालों के पहले आप योग्य बन गए वैकुंठ जाने के लिए, फिर भी हमने आपको इधर रखा है ताकि आप इस तरह और अनेक जीवात्माओं की उद्धार करो आप, उसके बाद अंत में हम आपको लेंगे, इसलिए आपको छोड़ा है इधर, सही समय पर हम आपको भी लेके जाएंगे, ऐसे बोलकर वैकुंठवासी लौट गए वैकुंठ। इस तरह एक कथा आता है। इसे हमें क्या पता चलता है, ये ब्राह्मण ने विष्णु व्रतों से जुड़ा था, ये ब्राह्मण विष्णु की आराधना, भगवान के मंदिर में जाना, सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर विग्रहों की आराधना करना, भगवान को प्रदक्षिणा करना, दंडवत प्रणाम करना, विष्णु सहस्रनाम पढ़ना। तो प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में इतने सब विधि विधान दिए हैं, ये सब विष्णु व्रत हैं, हम अगर करते रहेंगे हमारी पवित्रता बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते, क्योंकि इस दुनिया भौतिक दुनिया के गंदे संग से कुसंग से हम प्रभावित होकर अनेक बार मल चढ़ जाता हमारे मन में, उस मल को धुलाना है तो हमें विष्णु व्रतों को अपनाना है। इसलिए ये पूछ रहे हैं किम मनेन कृतम पुण्यम, इसने बहुत कुछ ऐसे विष्णु व्रतों को किया होगा, नहीं तो इतने कृष्ण के निकट कैसे पहुंच गया वो, इस तरह उन्होंने सोचा। क्योंकि हम जितना करेंगे विष्णु व्रतों को, उतना हमारे मन में भगवान कृष्ण की स्मृति स्मरण आएगा और हमारी पवित्रता बढ़ेगा और धीरे 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 हम उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे हम। तो अगले सेक्शन जो है 27 से लेकर उधर कृष्ण और सुदामा के बीच में चर्चा होने वाला है उनके गुरुकुल के दिनों के बारे में, जो मैं अगले क्लास में करूँगा 27 से लेकर। हाँ, तो बहुत सुंदर सेक्शन है वो, क्योंकि कृष्ण याद करते हैं अपने गुरुकुल के दिनों के बारे में सुदामा के साथ, क्योंकि सुदामा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतना हमें आदर दिया जा रहा है, क्या कृष्ण समझ गए मैं कौन हूँ। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, एक बार मैं और गौरंग प्रभु एक स्थान में गए थे, बड़े कार में गए थे हम, कभी कभी मेरे गुरु महाराज जो राजनाथ महाराज हैं उनके लिए लोग वेट कर रहे हैं, सैकड़ों लोग कीर्तन चल रहा है उनका, जोरदार कीर्तन। जब हम बड़े कार में जाते हैं लोग सोचते हैं कि महाराज जी आ गए, है ना, ऐसे लोग सोचते हैं। तो बड़ा कार, हमारा भी बड़ा कार है, महाराज जी का और भी थोड़ा बड़ा कार था वो भी है। तो हम जाकर उतरे तो वो लोग नए नए लोग थे, उनको मालूम नहीं था, उन्होंने सोचा कि हम ये गौरंग प्रभु के महाराज सोचा उन्होंने है? उनको उनको दो दो हाथों को पकड़ कर अंदर लेके गए, उनको बिठा दिया और हमको पांव धोना है आपकी, बोले भाई हम महाराज नहीं है, हम महाराज के छोटे ना हम सर्वेंट हैं। तो गौरंग प्रभु आश्रम इतना आदर क्यों चल रहा है? तो वो लोग सोचे कि महाराज जी आ गए, सोच रहे थे वो लोग ऐसे है। इस तरह सुदामा को भी आश्चर्य हुआ कि इतना आदर दिया जा रहा है, कृष्ण हो सकता है कि किसी और को देने योग्य जो आदर है वो मुझे दिया जा रहा है। क्या कृष्ण पहचानते हैं कि मैं उनके स्कूल का एक फ्रेंड था, गुरुकुल का, ऐसे उनका आश्चर्य हुआ। तभी कृष्ण मुस्कुराते बोला कि ए सुदामा, सोचो मत कि मैं भूल गया तुमको, मुझे पूरा याद है हमारे गुरुकुल के दिन। इस तरह बोलकर उन्होंने याद किया, जिसके बारे में हम अगले कक्ष में सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, और भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।